हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। पुकारो पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हे गोपाल हे गोविंदा, अब एक बार आखिरी बार सब लोग जोर से पुकारना है हर एक व्यक्ति को, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, वृंद देवी महारानी की, श्री वृंदा कुंड धाम की, श्री गुप्त कुंड धाम की, श्री नंदगांव धाम की, श्री वृंदावन धाम की। अरे इतने ठंडे क्यों हो आप लोग, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जितने उत्साही आप रहेंगे उतनी कथाएं प्रकट हो जाएंगी, तो आपके ऊपर है, अभी मेरे ऊपर नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का श्री नंदगांव में स्वागत है। नंदगांव कृष्ण भगवान का गांव है, बरसाना राधा रानी का गांव। और रोचक बात यह है कि पौराणिक वृंदावन जो है उसमें आज का जो भौगोलिक वृंदावन वो भी है, पूरी यमुना जी है, पूरा गोवर्धन पर्वत है, छाता है, खदीरवन है, नंदगांव है, बरसाना है और जावट है। ये सब मिलके 20 कोस का जो एरिया है उसको वृंदावन कहते हैं। 84 कोस में 20 कोस का वृंदावन है। और आज का जो वृंदावन है वो भौगोलिक वृंदावन छोटा सा है, वो मथुरा से 11 किलोमीटर दूर है, केवल 11 किलोमीटर। तो 281122 जो पिन कोड है वो जहाँ पर हम लोग हमारी यात्रा चल रही है, लेकिन वो पौराणिक वृंदावन नहीं है। तो इसका कारण ये है कि वृंदावन जो व्याख्या की गई है उसके अंदर गोवर्धन और यमुना जी सम्मिलित है, इंक्लूडेड। तो इस स्थान पर जब हम बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उसका नाम है वृंदा कुंड। तो मैं आऊँगा उसके ऊपर इतिहास के रूप में। सबसे पहले जो कथा शुरू होती है वो देवमीड़ राजा से होती है, देवमीड़। और देवमीड़ राजा को दो पत्नियाँ थी, एक शत्राणी और एक वैश्य। एक गोपी पत्नी थी और एक शत्राणी पत्नी थी। शत्राणी पत्नी से उनको शूरसेन की पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई और शूरसेन से वसुदेव जी और बाकी लोगों का जन्म हुआ है, तो वो क्षत्रिय बने। और जो वैश्य पत्नी गोपी थी उसका नाम था वरीयसी, उसके द्वारा उनको परजन्य महाराज का जन्म हुआ। और परजन्य को दो भाई थे, राजन्य और उर्जन्य। और दो बहनें थी, चार भाई थे, तीन भाई, परजन्य उर्जन्य राजन्य। और परजन्य को पांच पुत्र प्राप्त हुए, उपनंद अभिनंद नंद सुनंद और नंदन। और दो बहनें हुई, सानंदा और नंदिनी। ठीक है, ऐसा ही परिवार का विवरण है। लेकिन परजन्य महाराज सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित थे नंदगांव में। और यहाँ पर एक तड़ाक तीर्थ है, प्रेम तड़ाक तीर्थ, लेकिन वो अभी अदृश्य हो गया है। वहाँ पर परजन्य महाराज ने बहुत कड़ी तपस्या की थी और उस कड़ी तपस्या के रूप में उनको भगवान का दर्शन हुआ था, विष्णु जी का। और उन्होंने कहा आपको पांच पुत्र होंगे और आपका जो बीच का पुत्र है उसके द्वारा मैं जन्म लूंगा, ऐसे भगवान ने उनको वरदान दिया था। तो परजन्य महाराज ने यहाँ बड़ी तपस्या की, लेकिन यहाँ पर केशी राक्षस का बड़ा आतंक शुरू हुआ। केशी राक्षस था ना, जो घोड़े के रूप में था, जो बड़ा उनका चंगुल था, बहुत बड़ा प्रलंब केशी वगैरह, बहुत बड़ा ग्रुप था उनका। उसमें से केशी ने यहाँ पर बड़ा आतंक शुरू किया, तो उससे परेशान होकर वो महावन में गए, यमुना किनारे। और वहाँ जाने के बाद उनको पांच पुत्रों की प्राप्ति हुई। और फिर उन्होंने एक दिन तय किया कि अभी वन में जाना चाहिए, अभी हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने एक सभा ली बड़ी 84 खंबा स्थान पर और निर्णय लिया कि अभी मैं उपनंद को राजा बनाऊंगा, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र है। सभी पुत्र उनके सर्वगुण संपन्न थे बहुत। तो उपनंद बाबा का बड़े ही अच्छी तरह से समारंभ पूर्वक विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ और वो राजा बन गए नंदगांव के, सॉरी गोकुल महावन के, गोपों के राजा बन गए। और एक अद्भुत और आश्चर्यकारक घटना उस समय घटी। राज मुकुट पहनने के बाद में उन्होंने अपनी दृष्टि जो है वो नंद बाबा यानी बिचले मझले भैया पर स्थिर की और बहुत देर प्रेम से अपने भाई को ताकते रहे वो, और प्रेम से ताकते हुए उनके आंखों से अश्रु आए और सब लोग देख रहे हैं, स्तब्धता है सभा में। उपनंद बाबा महाराज नंद महाराज को देख रहे हैं और अचानक वो उठते हैं और नंद बाबा की ओर जाते हैं और अपने सिर का जो ताज है, मुकुट है, वो नंद बाबा के सिर पर पहनते हैं और गले में जो माला पहनी गई है वो उनको पहनते हैं। जो जो राज दंड था ना, राज दंड यानी राज राजा बनने के रूप में जो भी उनको चिन्ह दिए गए थे वो सब उन्होंने उनको अर्पण किए। सब लोग दंग भी रह गए और आनंदित भी हो गए और सबके आंसू आंखों से अश्रु आए। और वहां पर उन्होंने निर्णय घोषणा कर दी कि जरूर मेरे पिताजी ने मुझे राजा बनाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझसे कई प्रकार से, कई अधिक रीति से मेरा छोटा भाई जो है वो अधिक गुण संपन्न है, अधिक योग्य है। और परजन्य महाराज को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। हम लोग ये कथा क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में सभी भाई लोग झगड़ते रहते हैं, छोटी मोटी वस्तुओं के लिए झगड़ते रहते हैं। प्रेम तो है ही नहीं, केवल स्वार्थ है और इंद्रिय भोग की कामना है, इसमें भाई भाई का रिश्ता ही नहीं बचा है। तो ये कथा सुनने का लाभ क्या है कि हमको प्रेरणा मिले कि ऐसा भी हुआ करता था। इतिहास कहता है मुगलों का कि हर राजा ने अपने पिताजी का वध करके राज्य स्थापन किया है, राज्य छीन लिया हुआ है। और आजकल का इतिहास भी यही बताता है, बिना किसी को खत्म किए हुए उसका पद नहीं स्वीकारते हैं। ये अभी अभी का इतिहास है, वर्तमान का। लेकिन हमारा जो पौराणिक इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। इसमें खुद को प्राप्त हुआ जो अधिकार है, जो पद है, जो गौरव है, वो किसी को दे देना इच्छा से, प्रेम से, ये बहुत अनसुनी बात है, ये सुनना जरूरी है। तो परजन्य महाराज को इतना आनंद हुआ कि मैंने जो 5 बेटों को जन्म दिया है उसमें कितना प्रेम है। तो नंद बाबा भी गदगद हो गए और उपनंद बाबा ने सबसे पूछा कि मैं जो 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 कुछ किया है ये सबको मंजूर है? सब लोग ने बोला हरी बोल। पर ऐसा भी नहीं कि वो जो कर रहे थे किसी को विरोध था या किसी का मत ठीक था, सब लोगों को इतना आनंद आया देखकर। तो नंद बाबा भी गदगद हो गए। नंद बाबा ने कहा मैं एक ही शर्त पर यह सेवा स्वीकार कर सकता हूं, अगर ये आप लोगों की इच्छा है वरिष्ठों की, कि उपनंद मेरे प्रमुख सलाहकार बनेंगे, चीफ एडवाइजर, और उन्हीं की सलाह से मैं राज्य चलाऊंगा। इसलिए उपनंद बाबा की सलाह से कई निर्णय लिए गए हैं ब्रज की लीला में। और 84 खंभा में जो मीटिंग हुआ करती थी उसमें नंद बाबा राजा के रूप में बैठते थे, लेकिन हर एक निर्णय उपनंद बाबा को पूछ कर लिया करते थे। कितनी सुंदर बात है। उपनंद बाबा की, नंद महाराज की। तो नंदगांव जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत उत्कट जगह है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपने बालकों के, अपने ग्वाल बालों के साथ में अपना समय बिताया है। ऐसा है कि पद्म पुराण में श्लोक आता है जिसमें शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यत्राहम पर्वते भूय बल कृष्ण सुते नमः नंद धातृ समेतस्वम ममो परिविराजते। ये शिव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऐसी इच्छा है कि आप अपने ग्वाल बालों के साथ मेरे ऊपर क्रीड़ा करें। तो भगवान ने उनको वरदान दिया है, तो इसलिए नंदगांव में शंकर भगवान आकर पर्वत बने हैं, बरसाने में ब्रह्मा जी आकर पर्वत बने हैं, तो स्वयं विष्णु जी गोवर्धन भरकर यहाँ पर ब्रज में विराजमान है। उनको अनसुईया देवी ने शाप दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्योंकि उन्होंने उनके सतीत्व का परीक्षा लेने का प्रयास किया था और उसके परिणाम स्वरूप वो तीनों बालक बन गए थे और बहुत दिन तक, बहुत महीने तक समय तक उनके घर में ही रहे। तो तीनों पत्नियां ढूंढ ढूंढते आई उनकी और विनती किया, तो उन्हें जल का छिड़काव किया और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बालक थे वो पुनः अपने देवता स्वरूप में आ गए। तब उन्होंने उनको वरदान मांगा कि माता आपके घर में बालक के रूप में बहुत दिन रहे तो हमें आपके बालक के रूप में आने की इच्छा है। तो फिर ब्रह्मा जी चंद्र देवता के रूप में अनसुया के गर्भ से जन्म लिए, विष्णु जी दत्तात्रेय भगवान के रूप में अनसुया के पुत्र बने और शिव जी दुर्वासा के रूप में अनसुया के पुत्र बने। ये सब वरदान का मामला बहुत बढ़िया हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने शाप दिया उनको कि आपने हमारे सतीत्व की परीक्षा करने की इच्छा की, इसलिए आपको पत्थर बनना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी पत्थर बने, यानी पर्वत बने। और पुराण में वर्णन है, किसी एक कल्प में प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथों से इन तीनों पर्वतों को यहाँ प्रतिष्ठापित किया है। ये भी बड़ा अद्भुत बात है। इस तरह से ये विश्व ब्रह्मांड के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव हैं, वो यहाँ पर पत्थर बन के विराजमान है। पत्थर बनना मतलब मिस्टर नोबडी, कुछ भी आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लोग चढ़ेंगे, मलमूत्र विसर्जन करेंगे, थूकेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, उसको पैर लेकर चलेंगे उसके ऊपर। और ये सबसे महान व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति है, वंदनीय व्यक्ति है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि हम तो यकश्चित जीव हैं, ये तो त्रिदेव हैं, इनके शक्तिशाली, इनकी शक्ति इतनी महान है कि हम उसका अंदाज लगा सकते नहीं, ये क्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितना व्यक्ति वास्तव में महान होता है, उतना उसको साक्षात्कार भी महान होता है। उसका द रियलाइजेशन दैट ही हैज गॉट इज ऑल्सो दैट मच ग्रेट, एज मच ग्रेट यू आर ट्रूली स्पिरिचुअली। इसलिए उसकी अनुभूति थी कि भले हम कितने बड़े महान देवता क्यों न हो, लेकिन हमें श्री कृष्ण, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियों के चरणों के रज की आवश्यकता है हमारे उद्धार के लिए। इसलिए वो नम्रता से यहाँ पत्थर बने हैं। ये उनकी भी इच्छा थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी 120,000 साल तपस्या किया है। और फिर भगवान ने कहा है, वृषभानु पुरम गत्वा ममो परी क्रीड़ा करिष्यसि। तो ऐसा ये महान धाम है। और एक श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने नंदीश्वर अष्टक, इस दो उन्होंने श्लोक निर्माण किए हैं, नंदीश्वर अष्टक। नंदीश्वर यानी शिवजी भगवान का जो पर्वत है, उसका जो गौरवशाली रूप में उन्होंने अष्टक लिखा, उसमें कहा है कि यत सौभगम भगवता धरणी भृतापि, यत सौभगम भगवता धरणी भृतापि, न प्राप्यते सुरगिरी सहि को वराकः, नंद स्वयं वसति यत्र सुपुत्र दारो, नंदीश्वरा स मंद मंद मुदम दधातु। इसका सारांश में अर्थ ऐसा है, गोवर्धन तो बहुत बड़ा महान पर्वत है जो गौलोक में निवास करता है, तो गौलोक से यहाँ प्रकट हुआ है। और गोवर्धन बनने के बाद में उसको 7 दिन और 7 रात का संग मिला भगवान का, प्रत्यक्ष संग। और बीच में भी बहुत लीलाएं भगवान ने की, लेकिन कहते हैं इसमें श्लोक में कहा गया कि गोवर्धन से भी अधिक भाग्यशाली नंदीश्वर पर्वत है, क्योंकि नित्य दिन 24 घंटे 12 महीने और जितने भी साल भगवान ने यहाँ बिताए, हर दिन हर पल रात दिन यहाँ पर भगवान ने लीला किया है, यहीं पर रहे भगवान, यहीं पर सोए। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि नंदीश्वर गोवर्धन से भी अधिक भाग्यशाली है, यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। तो एक विशेष बात ऐसी बताई गई है कि बरसाने में गौर ज्योति है, गोल्डन एफलजेंस, नंदगांव में नील ज्योति है, नील तेज है। और एक है बरसाना और एक है नंदगांव, इसमें जो संबंध है यही ब्रज के रस का सार है। द एसेंस ऑफ ऑल द मेलो ऑफ ब्रज इज हिडन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ नंदगांव एंड बरसाना। इनके बीच में जो संबंध है वही ब्रज के अस्तित्व का सार है। फिर चैतन्य महाप्रभु 1515 में यहाँ पर जब आए, बहुत देर प्रयास करने के बाद भक्तों ने उनको रोक लिया, उसके बाद में फिर बाद में छोड़ दिया। फिर बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर और एक और सेवक को लेकर जब ब्रज में आए, मथुरा मंडल में पहले आए, और वहाँ से घूमते घूमते कामेश्वर गए, कामेश्वर से कामेवन से यहाँ पर आए, और उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया। तो पावन सरोवर ये चैतन्य महाप्रभु का भी चरणामृत है, उनकी वहाँ पर भजन स्थली भी है पावन सरोवर के किनारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर में स्नान करते करते वो ढूंढने लगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है बांग्ला में, वो पढ़ने लायक है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ओके, 550 वर्ष पूर्व यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए और तहां लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेम होइल विवल। नंदीश्वर का दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु बड़े विवल हो गए, प्रेम विवल हो गए। पावन आदि सब कुंड स्नाने को रिया, लोकेर पूछिल पर्वत ऊपर जाइया। पावन सरोवर में स्नान किया और लोगों से पूछा कि नंदीश्वर पर्वत कहाँ है, फिर उन्होंने कहा कि ऊपर है, तो उन्होंने ऊपर जाने का प्रयास किया। किछु देव मूर्ति हो या पर्वत ऊपर, लोक कहे मूर्ति है या गोफर भीतर। इसी है ना समझने के लिए क्या बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि कोई देव मूर्ति पर्वत पर है क्या, किचु मूर्ति होए देव पर्वत ऊपर है, तो लोग कहे मूर्ति है गुफा रे भीतर है, पर्वत में गुफा है उसके अंदर मूर्ति है। दुई दिखे माता पिता पुष्ट कलेवर, मतलब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पर्वत पर चढ़े हुए हैं और ढूंढ ढूंढ के ऊपर 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 गए हैं, तो उनको एक गुफा मिली है। तो उस गुफा में वो क्या कहते हैं, दुई दिखे यानी कि दोनों के दोनों तरफ, इस तरफ उस तरफ, दुई दिखे माता पिता पुष्ट कलेवर, बहुत मजबूत शरीर के माता पिता हैं। मध्य एक शिशु हो या त्रिभंग सुंदर, बोलो मध्य एक शिशु हो या त्रिभंग सुंदर, बोलो मध्य हो या मध्य एक शिशु हो या त्रिभंग सुंदर। श्री कृष्ण भगवान बीच में दोनों के विराजमान है। सुनी महाप्रभु मोने आनंद पाईया, सुनी महाप्रभु मोने आनंद पाईया, तीन मूर्ति देखी लो से गोफा उघड़िया। इतना सुंदर और मधुर वर्णन है, तीनों को देखा तो गुफा खोल के भगवान अंदर चले गए। ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरीर कोयला चरण वंदन, ब्रजेश्वर ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरीर कोयला चरण वंदन, प्रेमावेश कृष्णेर कोयलो सर्वांग स्पर्शन, प्रेमावेश कृष्णेर कोयलो सर्वांग स्पर्शन। मतलब उन्होंने पहले ब्रजेश्वरी यानी यशोदा माई, ब्रजेंद्र यानी नंद महाराज दोनों को वंदन किया है और कृष्ण के सारे अंग को प्रेम आवेश से स्पर्श किया है। जैसे हम लोग किसी प्रिय भक्ति को, बालक को मिलते हैं ना, समझो बालक आपका स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आएंगे तो कैसे मैया उसको सारे अंगों को ऐसे अपने हाथों से स्पर्श करती है प्रेम से, प्रेमावेश से। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को स्पर्श किया है। सब दिने प्रेमावेश नृत्य गीत कोयला, सब दिन प्रेमावेश नृत्य गीत कोयला, ताहा होय ते महाप्रभु खादिर बन आईला। तो ये श्लोक सब जो है भक्ति रत्नाकर शास्त्र में से है जो नरहरि सरकार ने लिखा है। तो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गुफा में गए और दर्शन किया तो कहते भाव विभोर होकर बेहोश हो गए वो, फिर उठे उन्हें उठकर आलिंगन दिया है और आलिंगन देने के बाद में उन्होंने यशोदा माई के विग्रह से ऐसी बात की है, ऐसी बात की है कि उनका भावावेश देखकर सब लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। कैसे स्वर्ण कांति वाले तेजोमय, इतने लंबे चौड़े आनंद से भरे हुए आनंद घन व्यक्ति आए हैं नंदगांव में, तो सब लोग एकदम चौंक गए थे, उनके पीछे पीछे गुफा में गए। और जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और यशोदा माई से बात कर रहे थे एकांत में, वो देखकर सभी ब्रजवासी समझ गए कि ये कृष्ण ही दूसरा अवतार लेकर आए हैं। तो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है ना, हमारा जो होता है ना कम्युनिकेशन, वो 30% बोलने से होता है और 70% हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, देह बोली से होता है। तो क्या बोल रहे हैं उनको सुना नहीं पड़ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से वो आव भाव कर रहे थे बोलते समय, तो उनको निश्चित रूप में विश्वास हुआ कि ये कृष्ण ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब ब्रजवासी जो है वो सिद्ध हृदयी है, सरल हृदयी है, उनके मन में कोई किंतु परंतु और कपट नहीं है। जब हृदय शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध मन का होता है, शुद्ध मन अंदर होता है हमारे, और दुभाव क्या कहते हैं उसको, द्विजा भाव नहीं होता है उसके अंदर, द्वंद्व नहीं होता है, ऐसे स्थिति में सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और सत्य यही था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, और ये सत्य साक्षात्कार के रूप में उनके हृदय में प्रकट हुआ सबके एक साथ में, और सब लोगों को ये समझ में आया कि ये कृष्ण ही है। फिर उसके बाद में फिर ये मूर्ति वहां पर मंदिर के रूप में स्थापना की गई है और बलराम जी का विग्रह बाद में लाया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के इतिहास के अनुसार, भक्ति रत्नाकर के अनुसार, जब महाप्रभु यहाँ पर आए थे पुनः प्रकट करने के लिए ब्रजभूमि को, तो नंदगांव में तीन विग्रह मिले थे, नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण। आज आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कई अधिक विग्रह हैं। राधा रानी का विग्रह भी ससुराल के भाव में वहां पर है। राधा रानी ससुराल के भाव में संकोच से और मर्यादा से दूर खड़ी है, और बलराम जी भी बीच में खड़े हैं जो नंद बाबा के पास में है, और यशोदा माई के पास में भगवान कृष्ण खड़े हैं। और उसके आज राइट में, हमारे राइट में जाएंगे उनके लेफ्ट में, तो धन सुखा मन सुखा है, यानी श्रीदामा और मधुमंगल जो भगवान के प्रियतम सखा है। और विशेष बात ये नंदगांव के दर्शन की कि वो नंद ईश्वर के ऊपर है, पर्वत के ऊपर है, और नंद बाबा और यशोदा के साथ में नंद कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान को एक छोटी थाली का अर्पण करते हैं, यशोदा माई को बड़ी थाली लगाते हैं डेढ़ गुना, क्योंकि लाला जो है वो अपनी थाली से भी खाता है और मैया की थाली से भी खाता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा इंतजाम होता है। और बड़े भैया बाबा के पास खड़े हैं, और जो दो भैया खड़े हैं ना धनसुखा मनसुखा, वो आप कभी जाएंगे, अभी आज तो जाने का प्लान नहीं है वहाँ पर, लेकिन जब जाएंगे जब देखना कि उनकी नज़र जो है एक कपट की ओर रहती है। उस मूर्तियों को पुजारियों ने कई बार घुमाने का प्रयास किया ताकि वो लोगों को देखें और लोग उनको देखें, नज़र मिलाए उनसे, लेकिन कितनी बार भी घुमाएंगे उनकी नज़र कपट में ही होती है, क्योंकि उस कपट में बंटा भोग लड्डू रखे रहते हैं, इसलिए वो उनको ही देखते रहते हैं। तो बंटा भोग जो है ना, कि राधा रानी बरसाने से आकर बनाती है, वो जो कुआं दिखाया ना आपको, वो कुआं में उनका रसोई घर है पावन सरोवर के पास, वहाँ पर वो ये लड्डू बनाती थी। कभी कभी नहीं आ पाती थी तो कमरा कमरा भरकर लाखों लड्डू एक के साथ बना के छोड़ती थी। और इस लड्डू के ऊपर यहाँ पर तुलसी का पत्र नहीं होता है, वो जब चाहे रात को दिन में उठेंगे, कभी भी जब भी मूड आएगा तभी खाने के लिए रखते हैं, कुछ देर बाद निकाल के नए लड्डू रखते हैं, इतने बड़े होते हैं वो। और वैसे ही लड्डू जो गोस्वामी यहाँ बनाते हैं, वो मेरे घर पे रहने के लिए आए थे, और हमने कहा कि वो लड्डू इतना फेमस है नंदगांव के कि आप अपने हाथ से बनाते हो, आप अपने हाथ से हमारे घर में बनाओ। तो उन्होंने सारे व्यंजन मंगाए जो मंगाते हैं, अच्छा अच्छा माल लाया उसके लिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का, और उन्हें अपने हाथ से हमारे घर में वो लड्डू बनाए, फिर भी उसका स्वाद नंदगांव के लड्डू जैसा नहीं हुआ, बहुत सुंदर हुआ, बहुत ही एक्स्टेटिक था वो, लेकिन नंदगांव का स्वाद नहीं हुआ, क्योंकि ये भूमि का परिणाम है। यहाँ जो भूमि है वो प्रेम से भरी हुई है, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ के पेड़, यहाँ की जमीन सब दिव्य है। आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं, ब्रज रज में वे लौट रहे हो। यहाँ पर नंद भगवान, नंद महाराज, यशोदा माई, गोपियाँ, ग्वाल बाल, गैया, बछड़े, हाँ मोर, जितने जीव है सब लोग यहाँ पर विचरण कर चुके हैं। एक बार मैं कुरुक्षेत्र जा रहा था परम पूज्य महाराज राधानाथ स्वामी के साथ, और मैं उनको रोटी वोटी खिलाया, ब्रजवासियों ने बना के दी थी, हम लोग कुरुक्षेत्र जा रहे थे, यहाँ से बरसाने निकले थे, और मैंने वो कार में बैठकर उनको सब खिलाया। वो कौन थे, वो जो रहते थे उधर बंगले में रहते थे वो, एनीवे कोई बात नहीं, एक गृहस्थ डिवोटी थे और महाराज थे, वो वैष्णव एटिकेट का पुस्तक एडिट कर रहे थे कार में बैठकर। तो हमने भोजन कराया, फिर मेरे भोजन की जब समय आया तो मैं अपना भोजन कर रहा था, तो मैंने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई और बंद करने का प्रयास किया, तो महाराज ने एक बॉक्स में से और एक रोटी निकाली, उन्होंने कहा विश्वरूप खाओ इसको खाओ। मैंने कहा महाराज मेरा हो गया है, तो महाराज ने उसका वर्णन करना शुरू किया कि ये रोटी उन गेहूँ से बनी है जो ब्रज भूमि में से उत्पन्न हुआ है, इस भूमि में मोर की, गाय की, बैल की और हर प्रकार के जीव की चरण चिन्ह लगे हुए हैं, और उनका मल भी यहाँ पर गिरा हुआ है, दिव्य खाद ले लो। तो मैंने खा लिया उसको, इतना गौरव वर्णन किया था। फिर और बंद कर रहा था तो और एक रोटी निकाली, विश्वरूप और एक रोटी खाओ, इस रोटी के अंदर वो खाद है जो मोर बैल गाय बछड़े सभी के मलमूत्र से गोमूत्र से बना हुआ जो भूमि है ब्रज रज, इसमें से ये गेहूं पैदा हुआ है। और फिर ब्रजवासी ने उन्होंने नाम लिया, जो हमारे पहचान के ब्रजवासी है, उन्होंने अपने हाथ से उसको आटा बनाया है, उसके हाथ से उसको हाथ की रोटी ऐसे 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 करके चुपड़ी है, फिर उसको कंडे के लकड़ी में लकड़ी वाले चूल्हे में डाला है, फिर ऐसा वो फूक गया है, फिर अपने हाथ से अपने गाय का जो घी है उसको चुपड़ा है, और उसको आप मना कर रहे हो ले लो। कहने का तात्पर्य क्या है, जिस पर आप बैठे हो भूमि इतनी पवित्र है, हर प्रकार की पवित्र कल्याणकारी आत्म कल्याणकारी जो वस्तु आपको जरूरत है वो सब रज में है। ब्रह्मा भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा ने प्राप्त कर लिया पत्थर बनकर, हमें पत्थर बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भूमि कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श से अति पावन हो गई है। फिर महाप्रभु जी ने नंदगांव के पर्वत पर बहुत सारे भगवान के नन्हे नन्हे चरण चिन्ह ने उसका दर्शन किया। यहाँ पर गोपियाँ आकर रोती थी भगवान जाने के बाद में, उनकी याद करते हुए उनके चरण चिन्ह के पास बैठकर आंसू बहाती थी। फिर ये जो वृंदा कुंड है, ये वृंदा देवी जो है वो कई प्रकार की है, एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारी वृंदा देवियां हैं। तो यहाँ की जो वृंदा देवी है वो राजा केदार की कन्या है, मैं उसकी कथा आपको बताऊंगा। एक वृंदा देवी है जो कुशध्वज राजा की कन्या थी, जिसको गौलोक में शाप प्राप्त हुआ, तो श्रीदामा को शाप प्राप्त हुआ, तो श्रीदामा शंखचूड राक्षस बनी। थोड़ी लंबी लंबी लीलाएं अभी पुराणों में आती है, क्योंकि भगवान और राजा रानी, भगवान और विरजा देवी वो एक कुंज में मिल रहे थे गौलोक धाम में, तो श्रीदामा जी उधर खड़े थे पहरेदार के रूप में। तो राजा रानी को पता चला कि भगवान विरजा देवी को अकेले मिल रहे हैं, तो वो वहां पर अपने सखियों को लेकर आए, तो श्रीदामा ने उनको रोका, बहुत झगड़ा हुआ उनका, और ये झगड़ा सुनकर राजा कृष्ण भगवान विरजा देवी गायब हो गए, विरजा देवी नदी बन गई और गायब हो गई, और कृष्ण भी लुप्त हो गए। फिर दोबारा बातें सुनी उनकी, दोबारा वो व्यक्ति बनकर आए, मिलने लगे, दोबारा राजा ने आई, दोबारा आवाज सुनी, फिर उनका इतनी बहस हुई तो राजा रानी ने शाप दिया अपने भाई को, जा तू राक्षस बन जा। तो वो शंखचूड बना, और सुदामा कोई कम नहीं है, उसने भी अपनी बहन को शाप दिया, जा तुझे अपनी विरह प्रियतम से 100 साल का विरह होगा और पृथ्वी पर होगा, इसलिए 100 साल राजा रानी यहां पर रही और भगवान कहीं और रहे। तो ये वो वृंदा देवी है जिनका आने के बाद में विवाह शंखचूड यानी सुदामा के अवतार से हुआ, और शंखचूड का जब भगवान ने वध किया तो शंखचूड का जो आत्मा थी ज्योति के रूप में सुदामा में विलीन हो गई। दूसरी जो वृंदा देवी है वो जालंधर की पत्नी है, वो भी वृंदा देवी को शाप प्राप्त हुआ था कि आप राक्षस की पत्नी बनोगे, तो जालंधर की पत्नी बनी, बड़ा युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, लंबी कथा है उसकी। तीसरी वृंदा देवी जो है वो स्वयं राधा रानी है, उनका भी एक नाम वृंदा देवी है, वृंदावनी वृंदा देवी। और यहाँ की शान की जो वृंदा देवी है, जो आज के हमारे इस युग के लीलाओं में संबंधित है, वो केदार राजा की कन्या है। तो केदार राजा कौन थे, ब्रह्मा जी सबसे पहले, उसके बाद स्वयं भू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, उसके पुत्र उत्तानपाद, जानते हैं उत्तानपाद को आप, चौथे स्कंद में ध्रुव जी का वर्णन आता है, तो उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी के पुत्र नंद सावर्णी मनु, और नंद सावर्णी मनु के पुत्र है केदार, उनकी पुत्री हुई वृंदा देवी। ये केदार राजा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, साक्षात महालक्ष्मी केदार राजा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, और उसका नाम वृंदा रखा गया। उसने यमुना किनारे में 108 युग तक तपस्या किया, कितना युग तक किया, सब लोग ने बोला 108 युग तक यमुना किनारे कठोर तपस्या किया कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और उस तपस्या की वजह से इस वन को वृंदावन नाम पड़ा। ये उसकी महिमा है कि उस तपस्थली होने की वजह से वृंदावन नाम पड़ा। तो उसके बाद में ब्रह्मा प्रकट हुए प्रसन्न होकर, उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज की अभिलाषा कर रहे हो आपका अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा, हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा आपका अभिष्ट पूर्ण होगा, मतलब आपका श्री कृष्ण से विवाह होगा। फिर उन्होंने सोचा कि ये वरदान कार्यान्वित होने के पहले उनकी परीक्षा ली जाए, यमराज को नियुक्त किया गया, धर्मराज, यमराज को। तो धर्मराज एक जवान सुंदर युवा बनकर आए और वृंदा देवी तपस्या कर रही थी वहां गए। उन्होंने बहुत सारा प्रश्न पूछा उनको कि आप क्यों चाहते हैं कृष्ण को, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, जो सहज प्राप्त नहीं होते हैं, तो क्या हुआ ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ये तो होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी सतीत्व बता रही थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे और 108 युग तप करना पड़े, लेकिन मैं उनकी विवाह करूंगी, उनकी अभिलाषा रखती हूँ। बीच में उसने बोला, अरे वो कृष्ण को पीछे आप क्यों जा रहे हो, वो ना असंभव चीज है, क्यों ना आप मुझसे विवाह कर लो, मैं इतना युवा हूँ, सुंदर हूँ, धर्मशील हूँ। तो इतना क्रोध आया उसको, इतना क्रोध आया, उसने उसको शाप दिया, तुम्हारा क्षय हो जाए। और चौथी बार बोलने वाली थी, उतने में शिव जी प्रकट हो गए और रोक लिया उसको, और मत बोलना, ये साक्षात धर्मराज है, यमराज है साक्षात। अगर ये धर्मराज धर्म के प्रतीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि धर्म नष्ट हो जाएगा, फिर अगर इनका क्षय हो जाएगा तो तीन बार पर रोका गया और फिर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया कि आप हमारे परीक्षा में पास हो गई हो, आप अभी गौलोक की प्राप्ति करोगे और फिर जब भगवान आएंगे वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में, तब आपका उनके साथ में विवाह होगा। इसीलिए सत्य युग में धर्म जो है वो 100% से शुरू होता है। ध्यान से सुनो, ये तीन बार जो क्षय हो जाओ का शाप दिया गया, उसका परिणाम कहां दिखाई पड़ता है? एक कल्प में, एक दिव्य युग में सत्य युग की शुरुआत 100% धर्म के साथ में होती है, लेकिन सत्य युग के समाप्त होने तक 25% धर्म जो है उसका क्षय हो जाता है। त्रेता युग 75% धर्म से शुरू होता है और त्रेता युग समाप्त होते होते 25% और क्षय हो जाता है। द्वापर युग शुरू होते हुए 50% में शुरू होता है और द्वापर के अंत में 25% और समाप्त होकर कलयुग की शुरुआत 25% में होती है और फिर कलयुग के एंड में 0 हो जाता है और फिर धर्म की वापस प्रतिष्ठापना होती है दूसरे युग में। फिर उनको और एक वरदान मिला वैकुंठ जाने के, गोलोक जाने के पहले, कि आप बीच वाले एक वराह कल्प, हमारा जो कल्प है ना वो डिफरेंट कल्प है, बीच में एक वराह कल्प आएगा, उसमें आप छायाभूत मतलब प्रति राधा रानी बनोगी, राधा रानी नहीं होगी आप, लेकिन प्रति राधा रानी के रूप में जन्म लोगी। लोग ये नहीं समझेंगे कि राधा रानी असली कौन है, लेकिन आपको मेरे साथ लीला करने का मौका मिलेगा राधा के रूप में, छायाभूत राधा के रूप में। उसके बाद में आप दोबारा जब वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में आओगे तो वृंदा देवी बनोगे और आपका विवाह मेरे साथ में होगा। तो वो वृंदा देवी का ये कुंड है, वृंदा देवी का कुंड, वृंदा कुंड। और राधा रानी ने बड़े ही प्रेम से वृंदा देवी का विवाह कृष्ण भगवान से वृंदावन में किया है। और उसके पहले भी नाम तो तपस्या से बना था, लेकिन राधा रानी का आधिपत्य था उसके ऊपर, राधा रानी का वन था ये। तो राधा रानी ने विवाह किया कृष्ण का वृंदा देवी के साथ और वृंदा देवी को भेंट में वृंदावन दे दिया, ये भी एक कारण है उसका नाम वृंदावन पड़ा। इस प्रकार से ये वृंदा कुंड की इतिहास कथा है। आपके सामने जो कथा है वो वृंदा कुंड है और उसके पीछे जो कुंड है वो गुप्त कुंड है। इसके फर्क ये है कि वृंदा देवी जो है वो बहुत ही महान देवी है और महान गोपी है, भले उनका स्थान अष्टगोपी में न हो, लेकिन उनका एक विशेष 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 स्थान है जिससे उनकी सेवा होती है। वो सेवा उनकी ये है कि यहाँ पर उनका ये ऑफिस है, हेड ऑफिस, उनके पास 1000 प्रमुख तोता हैं और 1000 तोता के अपने अपने लाखों तोता असिस्टेंट हैं और वो पूरे ब्रज में जाकर हर एक पल का ब्रज में क्या समाचार है वो लेकर आते हैं, यानी कि कौन से फूल खिले हैं, कौन सी सुगंध खिली है, कौन सी किस तरह हवा चल रही है, कौन सा वातावरण है, कौन से राग के लिए योग्य है, कौन सा ऋतु चल रहा है और किस लीला के अनुकूल है, आज की होली कहाँ खेली जाए, आज का रास कहाँ रचाया जाए, ये सारा जो न्यूज़ है ना, एकदम सूक्ष्म खबरें आकर दोपहर तक राधा रानी को पहुँचा देते हैं, सॉरी वृंदा देवी को। वृंदा देवी इसका संकलन करते हैं, क्या करते हैं, संकलन करते हैं और उसका एक निर्णय लेते हैं कि एक प्रस्ताव रखते हैं कि यहाँ पर लीला की जा सकती है। तो ललिता विशाखा के साथ में समाज क्या कहते हैं उसको, डिस्कशन करके, चर्चा करके फिर वो तय करते हैं कि आज की लीला इस जगह पर होगी और वहाँ पर फिर कौन किसको खाना खिलाएगा, कौन खाना बनाएगा, क्या क्या बनेगा, शुरुआत में क्या बनने देंगे, बीच में क्या देंगे, रात में क्या देंगे, सुबह उठने के समय क्या देंगे, क्योंकि लीला सूर्यास्त से शुरू होती है और सूर्योदय तक चलती है। कितने घंटे हो गए, कम से कम 12 घंटे तो होते हैं ना, तो 12 घंटे में कई प्रकार के मूड होते हैं। एक वेलकम होता है, फिर उसका स्वागत होता है, फिर झूला होता है बीच में, फिर होली होती है, फिर क्या नहीं होता है, वो सारा विस्तार पूर्वक आयोजन वृंदा देवी करती है। हर एक वस्तु का सुबह सूर्यास्त सूर्योदय होने के बाद भगवान और राधा रानी निकल जाएंगे अपने अपने भवन में, तब तक का पूरा डिटेल इंतजाम वृंदा देवी करती है और इस लीला का आरंभ होता है। और ये साल में एक बार एक घंटे का ड्रामा नहीं है, हमारे मंदिर में साल में एक बार एक ड्रामा होता है। प्रभु जी ने कितने बाल सफेद हो गए ड्रामा का इंतजाम करते करते, है ना, कितनी व्यवस्था होती है उसके अंदर। लेकिन ऐसा एक घंटे का ड्रामा, 12 घंटे का नाटक रोज होता है लीला के रूप में। कितना काम करते होंगे योग, वी थिंक वी वर्क सो हार्ड, बट ये 12 घंटे की इतनी दिव्य लीला, इतनी सूक्ष्म लीला, इतनी क्या कहते हैं ट्रांसेंडेंटल पास टाइम रोज करते हैं, एवरी सिंगल डे। और उसका सारा जो आयोजन है वो यहाँ पर होता है। तो हमको इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके अंदर जो भगवान की सेवा करने के लिए जो आप इतनी बुद्धिपूर्वक, योजना पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिल पूर्वक, हाँ प्रेम पूर्वक लीलाओं का आयोजन करते हैं, हमारे को भी थोड़ा सा सेवा दे देना उसके अंदर, ताकि हम भी आपकी सेवा कर सकें। तो हर समय ललिता विशाखा के नेतृत्व में वृंदा देवी प्रधान आयोजक है भगवान की लीला की, ये उनकी विशेष सेवा है। जितनी भी प्रज्वल लीला हो रही है गोपियों के संग, वो सब लीलाएं वृंदा देवी आयोजित करती है। नो ब्रेक, नो संडे, नो एकादशी, एवरी डे। और वो भी ऋतु के अनुसार, कभी होली का मौसम है, कभी जन्म का मौसम है, कभी झूला का मौसम है, कोई ठंड का मौसम है। अच्छा, ये भी उसमें होती योजना कि समझो आपको अभी गर्मी का मौसम है, आपको लग रहा है वर्षा होनी चाहिए, तो वर्षा होने का इंतजाम भी करती है वो, क्योंकि सारे देवता उसके अधीन रहते हैं। वो कहेगी आज की वर्षा करो लीला में, तो वर्षा होती है। वो कहेगी आज ठंड होना चाहिए, तो ठंड हो जाती है। जो चाहे वो चीज जो नामुमकिन है, वो देवताओं के ऊपर आधिपत्य होने की वजह से सारे देवता उनके अधीन रहते हैं। जैसा वो कहेगी वैसे ऋतु निर्माण करते हैं। 6 ऋतु है, 6 व्यक्ति हैं, वो अपने अपने समय पर दो दो महीने का कार्य करते हैं, है ना। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, उसके बाद में हेमंत ऋतु। वो सारे व्यक्ति हैं, वो हाथ जोड़कर वृंदा देवी की सेवा में अधीन रहते हैं। और जब चाहे तब, कभी 2 ऋतु साथ में, कभी 3 ऋतु साथ में, कभी ऑल 6 साथ में। जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था ना, तो सारे 6 ऋतु एक ही साथ में प्रकट हुए थे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। ये सब आयोजन वृंदा देवी, आप सोच नहीं सकते हैं कि कहां कहां तक उसकी पहुंच है और कहां कहां तक उसका कल्पना शक्ति पहुंच सकती है। यू कैन इमेजिन हाउ फार शी कैन गो इन इमेजिनेशन व्हाट वी कैन डू टुडे विद राधा एंड कृष्णा। कौन सा रंग पहनना है कपड़ा, कौन सा प्रकार का फूल पहनना है, कौन से रंग का फूल पहनना है, कौन से गंध का फूल पहनना है, कौन सा गीत गाना है, कौन से ताल में आज नृत्य करना है, कौन से स्वर में गाना है, कौन करेगा नृत्य, कौन भोजन कराएगा, कौन खिलाएगा, कौन द्रव्य देगा, कौन भोजन खिलाएगा, कौन आरोगेगा, कौन शैया बनाएगा, कौन सुलाएगा, कौन गीत गाएगा, कौन जगाएगा सुबह, ये सारा मेटिकुलस अरेंजमेंट वृंदा देवी करती है। तो वृंदा देवी को शत शत प्रणाम करना चाहिए हमको, अनंत बार। और प्रभुपाद जी हमारे इतने दयालु हैं कि उन्होंने सुबह और शाम 2 बार वृंदा देवी की आरती करने का इंतजाम किया है, क्योंकि वही वृंदा देवी पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो गई है। वो भी एक लंबी लीला है, समय नहीं अभी, लेकिन उस लीला में वृंदा देवी को पौधा बनना पड़ा, ऐसा दिव्य पौधा की जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और अनंत उसके 300 से अधिक उस पे से दवाई बन सकती है, 24 आवर प्राणवायु देता है। तो भगवान ने जब भी उनको शाप दिया तो वो पौधा बन गई, तो भगवान को उसने शाप दिया कि आप पत्थर बन जाओ, पहले उन्होंने भगवान को शाप दिया, तो भगवान पत्थर बन गए, तो वो शालिग्राम शिला है। तो भगवान ने कहा कि पत्थर बनूंगा लेकिन आपके चरणों में रहूंगा और आप पौधा बनेंगे, तो फिर वो पौधा बन गई तुलसी। और ये तुलसी की प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। वृंदा देवी का प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्या तक भी माफ हो जाती है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण की हत्या मतलब वध करना ही नहीं है, वध करना भी ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण के दिल को दुखाना ये भी ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म पातक कहते हैं उसको, उसको कहीं भी निदान नहीं है पूरे विश्व में, कई पुराण में उसका उपाय नहीं है। वहां तक का पातक भी केवल तुलसी की प्रदक्षिणा कर से नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारा शरण लोए तारवांछा पूर्ण होए, जो भी हमारी भक्ति में इच्छाएं हैं वो केवल तुलसी महारानी की इच्छा से पूर्ण हो सकती है। और कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, हाँ आप यहाँ पर उनकी कृपा प्राप्त करने से ब्रजवास प्राप्त कर सकते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं इनकी कृपा से, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं और राधा कृष्ण के धाम में निवास प्राप्त कर सकते हैं। सारी कृपाएं वृंदा देवी के द्वारा प्राप्त होती है। केवल एक वृंदा देवी को एक बूंद रोज प्रेम से जल अर्पण करने से भी गौलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। तुलसी का एक पत्ता अगर किसी प्याले में पानी में रखा जाए तो विश्व भर की जितनी पवित्र नदियां हैं वो सारी इसमें प्रवेश करती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने क्या बताया आप बता सकते हैं, अभी लास्ट में क्या बताया? तुलसी का पत्ता किसी भी जल में रखा जाए तो विश्व भर की जितनी पवित्र नदियां हैं वो उसमें प्रवेश कर लेती हैं। और क्या कहें, समय कम है लेकिन बहुत उनका गरुड़ पुराण में तुलसी का महात्म्य लिखा गया है। तुलसी का जो काष्ट होता है ना, काष्ट जो डंडी होते हैं ना, इस पे पत्ते आते हैं, वो जब तुलसी शरीर छोड़ देती है तो वो सूख जाता है, उसको हम तुलसी काष्ट कहते हैं। उस पर अगर हम कॉटन लगाकर गाय का घी लगाकर वो दीपक अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो आम दीपक से लक्ष लक्ष बार अधिक लाभ होता है, कार्तिक महीने में भी और बाकी समय में भी। इसलिए हम लोग कार्तिक महीने में तुलसी की डंडी पर दीपक जलाकर भगवान को अर्पण करते हैं। वो काष्ट तुलसी का अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की छाती पर रखकर अगर उसका दहन किया जाए तो वो सीधे गोलोक धाम पहुंच जाता है। और तुलसी का पत्ता जिसके मुख पर, इसके जबान के अंदर या सर पर या शरीर पर कहीं भी होगा, उसको यमराज छू नहीं सकते। यमराज उस व्यक्ति के पास में भी नहीं आ सकते, यमदूत भी नहीं आ सकते। और अगर उस व्यक्ति की नरक में जाने की योग्यता होगी कर्मों के अनुसार तो उसके लिए नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर उसको पर भाग्यवान होगा, अगर कोई भक्ति वेदांत हॉस्पिस में आ गया हो या भक्ति वेदांत अस्पताल मुंबई में आ गया और मरता होगा तो हमारे पास सभी मरने वाले लोगों के ऊपर तुलसी गंगा जल मिल जाता है, उनको कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा है। तो नरक में जाने योग्य होगा तो भी उसके लिए नरक के दरवाजे बंद हो जाएंगे और वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, इतना महात्म्य। इसलिए कोई अगर मरने वाला व्यक्ति होगा तो जरूर उसके छाती पर तुलसी काष्ठ रखना, वो निकालना नहीं उसको, उसके हाथ में उसका दहन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सारांश में कहा जाए तुलसी हमारे लिए अति अति वंदनीय है। तुलसी का अपने जीवन में होना और तुलसी का वंदन करना, रूप गोस्वामी के अनुसार जो 64 भक्ति के तत्व है उसमें 6 जो प्रधान तत्व है उसमें तुलसी की पूजा सम्मिलित है। वन ऑफ द 6 मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटीज ऑफ भक्ति इन वैष्णव लाइफ इज तुलसी पूजा। इसलिए आपको कितना भी आलस्य आता होगा रोज तुलसी को जल देना और उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करना, इतना भी करेंगे तो आपकी भक्ति की वृद्धि होगी और एक ना एक दिन आपको राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। बोलो तुलसी महारानी की। तो ये जो तुलसी वृंदा कुंड है यहाँ पर राधा रानी की इच्छा से कभी अपने घर पे भी लीला का इंतजाम होता है। तो यहाँ पर सभी सखा सखी सभी सखियां भगवान कृष्ण मिलते हैं। और जब राधा कृष्ण को अकेले मिलने का दिल होता है, देखो यहाँ पर ब्रज लीला जो है ना वो कई प्रकार की है। एक कुंज लीला है जो ऐसे खुले ग्राउंड में होती है, फिर एक निकुंज लीला है उसमें केवल गोपियां मिलती है, कुंज में ग्वाल बाल गाय सब आ सकते हैं, फिर निकुंज लीला है, फिर एक निवृत्त निकुंज लीला है उसके अंदर केवल गिने चुने गोपियां होती है, कभी 64 होती है, कभी 16 होती है, कभी 4 होती है, कभी 8 ही होती है एज पर देयर डिजायर। तो ये बहुत ही प्राइवेट होता है, बाकी गोपियों को भी इसमें प्रवेश नहीं है क्योंकि गोपियां कई प्रकार की है, सहचरी है, किंकरी है और बहुत सारी कैटेगरीज है उसके अंदर। लेकिन जब राधा और कृष्ण को केवल अकेले ही मिलने का दिल होता है तो वो गुप्त कुंड में इंतजाम होता है, वो जो पीछे है उसके लिए गुप्त कुंड कहा गया है। सारी व्यवस्था करते हैं बैकग्राउंड में लेकिन जाता कोई नहीं उधर, तो दोनों ही लीला करते हैं। जब भी उनका भोजन का समय होता है भोजन दिया जाता है, जब भी कुछ जो भी कुछ करना है उसकी सेवा की जाती है लेकिन नो इंटरफेरेंस। तो वृंदा कुंड स्थान में 2 कुंड है, वृंदा कुंड और गुप्त कुंड। बोलो वृंदा देवी की। सब लोग एक बार तुलसी का मंत्र बोलेंगे, यानी कानी च पापानी, जोर से बोलना है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा। इसके बाद में नंदगांव में अनंत स्थान है, यहाँ पर ग्वाल बालों ने निवास किया ना, तो ग्वाल बाल बहुत उधम मचाते हैं, और वही जीन्स आज भी नंदगांव के बच्चों में है, उसी वंश के हैं सब लोग। तो ऐसा कहते हैं कि आज के तारीख में भी कि नंदगांव के जो बालक होते हैं बहुत उद्यमी होते हैं, प्रेमी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कपटी और वो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन बहुत उद्यमी होते हैं। और यहाँ अगर कोई साधु इतने उद्यम में भी अगर भजन कर सकता है तो उसी को सिद्ध बाबा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्तम है, पता है ना आपको, बाल बाल कैसे करते हैं, कभी धोती खींचते हैं, कभी दुपट्टा खींचते हैं, कभी तपली तपली मारते हैं, कभी सेंडी खींचते हैं, कभी कपड़ा चोरी करके लेके जाते हैं, कभी क्या क्या करते रहते हैं। तो इसलिए नंदगांव में जो भजन करता है और यहाँ भजन अगर उसका सिद्ध होता है तो वो वास्तविक रूप में सिद्ध बाबा माने जाते हैं। तो यहाँ पर कई स्थान है, पहले मैं स्थान गिनता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं सबकी कथा कथा कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। यहाँ से पास में पावन सरोवर है, ओके, उसके बाद में मोती कुंड है, उसके बाद में तेर कदम्ब है, उसके बाद में आशेश्वर महादेव है, उसके आगे मोर कुंड है, कृष्ण कुंड है, ललिता कुंड है, उद्धव क्यारी है, राइट साइड में नंद सरोवर है, यशोदा कुंड है, नंद बैठक है, नरसिंह का मंदिर है, पहाड़ पर नंदीश्वर है, भगवान का दर्शन का वर्णन तो मैंने कर ही दिया आपको, और 56 कुंड है यहाँ पर, उसमें से एक कुंड अद्भुत कुंड हमारा पता है कौन सा है, छाछ कुंड। इतना यहाँ पर छाछ हुआ करता था कि वो परोसते समय जो गिरता था वो पहाड़ से उतरकर उसका कुंड बना था, बहुत विशाल, इतना वैभव था यहाँ पर। वो ऐसा बनाया हुआ कुंड नहीं था, अरे देते देते जो गिर गया था ना उसका नदी बनकर नीचे जमा हो गया, वो उसको छाछ कुंड कहते हैं, आप यू कैन इमेजिन। और यहाँ पर ऐसी अद्भुत लीलाएं हुई है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना तो यहाँ के लोग इतने खुश हो गए कि इतना देर के बाद में हमारे नंद बाबा को पुत्र प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने ना वो जो सब लोग सुन रहे ना हरे कृष्णा, ऐसे बड़े बड़े गोले बनाए मक्खन के, वो तो बनाते हैं रोज, लेकिन वो सारे फेंकने आरंभ किया एक दूसरे के ऊपर, कितने करोड़ों मक्खन के गोले फेंके होंगे। और नंद भवन के आंगन में, हाँ मोरी होते ना मोरी, जो ड्रेनेज क्या बोलते हैं उसको, नानी ट्रैप है ना, वहां पर सब जाके अटक गए, तो सब ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, फिर दूध दही का वर्षा हुआ, कितना वैभव होगा उनके पास, कितना वैभव होगा। कहते हैं नंद भवन के आंगन में क्षीर सागर का निर्माण हुआ, और उस क्षीर सागर में सब लोग यहां तक डूबे हुए थे, इतना मक्खन और दही और दूध फेंका गया। उसके बाद में सब डूब गए तो सब लोगों को मजा आ गया, तो उन्होंने कहा नंद बाबा अच्छा क्षीर सागर निर्माण हो गया है, अभी मंथन भी होना चाहिए, और नंद बाबा आपको नाचना है। तो बोले मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया, मैं क्या नाच करूंगा। तो उन्होंने क्या, वो तो ग्वाल बड़े मानते हैं, अभी इतनी खुशी का मौसम है, इतने सब मूड में है तो क्या छोड़ेंगे। तो उनको ना ऐसा वस्त्र बांधा उनके पेट पे, एक यहां से निकाला, एक वहां से घुमा के इधर निकाला, और यहां खींचा तो ऐसे गोल घूमे, यहां खींचा तो ऐसे गोल घूमे, ऐसे वो दही का मंथन रवि बना दिया उनको, और पूरा नंद बाबा को नाचने नहीं आ रहा था, बड़े बड़े पेट थे उनके, फिर भी उनको गोल गोल नचाया उन्होंने। तो कहते हैं कि क्षीर सागर का मंथन तो एक समय पर हुआ था, लेकिन क्षीर सागर का मंथन नंद भवन के आंगन में भी हुआ है। बोलो नंद बाबा की। तो ऐसा यहाँ वैभव था। और एक ऋषि है जो वो कहते हैं कि बहुत बड़े सिद्ध ऋषि है, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक श्लोक लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि मैं किसी भी भगवान का पूजन नहीं करता, जितने भगवान के अवतार हुए, नरसिंह भगवान हुए हैं, हम क्या वरा अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार हुए हैं, कुर्मा अवतार हुए, भगवान के नाना संभवामी युगे युगे, लेकिन मैं किसी का पूजन नहीं करता, मैं केवल नंद महाराज का पूजन करता हूं, क्योंकि नंद महाराज के आनंद के लिए परातत्व पर ब्रह्म भगवान जो है वो बालक बनकर रेंग रहे उनके आंगन में, एक अनजान बालक बनकर। इतना भगवान अगर बालक बनकर किसी को रिझाने के लिए धारण करते कर सकते हैं, तो नंद बाबा के ऊपर कोई महान गौरवशाली वंदनीय व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो मैं केवल उनका पूजन करता हूँ। तो नंद भवन के आंगन में साक्षात गोलोकेश्वर जो सृष्टि का दिव्य और भौतिक सृष्टि का निर्माण करते, जो अनंत निर्माण है, अनंत योनियों को निर्माण करते हैं, इनका बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। हर एक पत्ता उनकी इच्छा से के बिना हिल नहीं सकता है। वो अपना भगवत्ता भगवत पद छोड़कर एक अनजान बालक बनकर, जिसको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, डर लगता है हाँ बादल की गड़गड़ाहट होने से, वैसा रूप धारण करके इसके आंगन में रेल रहे हैं, रेंग रहे हैं। सुंदर सुंदर लीला है। मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, कृष्ण बलराम दोनों रेंग रहे हैं, प्रथम अवतार और स्वयं अवतारी कृष्ण, और रेंग रहे हैं तो क्या कहते हैं कि वो पैरों में घुंघरू बांधे उनके, थोड़ा थोड़ा चलना भी आता है लेकिन गिर जाते हैं, तो मैया चलना सिखा रही है, जो विश्व को चला रहे हैं उसको नशोदा मैया हाथ पकड़कर चलाना सिखा रही है, और वो चलते नहीं है क्योंकि उसके पैर में जो घुंघरू है वो बड़ा आवाज सुंदर सुंदर कर रहे हैं ध्वनि, जिसकी ध्वनि सुनने के लिए आकाश में देवता इकट्ठा हो रहे हैं, और वो जोर जोर से ठोक रहा है अपने पैर जमीन पर, और वो छुन छुन आवाज उसको पता चल रहा है कि मेरे ही पैर से आ रही है, तो चलना कम लेकिन आवाज सुनने में ज्यादा बिजी है। यशोदा कह रहे देखो रोहिणी, देखो देखो कैसा बालक है, चल नहीं रहा है, केवल ठोक रहा है अपने पैर को, फिर वो चला रही है उसको, फिर छोड़ देती है, फिर रेंगने लगता है, फिर छोटा सा बालक है, बड़े बड़े ग्वाल बाल है, तो कोई एक पिता नहीं लेकिन ऐसा कोई ग्वाल बाल वहां खड़ा है बड़ा गोप, उसका कुर्ता पकड़ के खड़े हो जाते, तो कुर्ता पकड़ के खड़े होने से लगता है कि नंद बाबा है, लेकिन वो जब घूमता है वो व्यक्ति तो पता चलता है कि नंद बाबा नहीं है, कोई और है, तो छोड़कर भागता है बालक अपनी माता के गोद में, यशोदा माई रोहिणी मैया उनको गोद में लेती है, तब प्रेम से उनको देखती है कि हमारा बालक भाग भाग के डर डर के आ गया है, बेटा कोई नहीं है, वो हमारे ही है, चाचा जी है वो, उनको लग रहा है कि हमारे बाबा हैं। यही कथा राधा रानी के विषय में भी विश्वानु महल में होती है। फिर वो थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर वो नंद भवन तो ऊपर है ना, तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे पहली सीढ़ी को उतरने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उस समय लोग भी बड़े लंबे लंबे थे, तो सीढ़ियाँ भी लंबे लंबे होते कि नहीं, लेकिन उसकी हाइट जो थी वो उस सीढ़ी से कम थी, कमर के नीचे जितने पैर की लंबाई है उससे वो सीढ़ी लंबी है, और इनको उतरना है बालक बालक लीला में, तब जो उतरने का कोशिश कर रहे हैं तो पेट पे लटकते हैं पहली सीढ़ी पर, आपको ध्यान में आ रहा है, पेट थोड़ा सा बड़ा है, बीच का हिस्सा है, शरीर के दो हिस्से होते हैं ना ऊपर का अधर और ऊर्ध्व और अधर, हाँ अधरांग ऊर्ध्वांग अधरांग, तो पेट थोड़ा सा बड़ा है, मक्खन खाते हैं ना बहुत सारा, तो ऐसा वो पहली सीढ़ी पे लटका हुआ है और पैरों की लंबाई छोटी है सीढ़ी से, इसलिए वो लटक रहा है, परब्रह्म जो है वो लटक रहा है, कोशिश कर रहा है कि नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं, और ये दृश्य नारद मुनि देखते हैं, और नारद मुनि की आंखों से आंसू आते हैं, पहले आनंद के आंसू आते हैं फिर दुख के आंसू आते हैं, आनंद के आंसू क्यों आते हैं, देखो देखो हमारे भगवान जो है सब कुछ भूल कर ब्रजवासियों को रिझाने के लिए कैसी लीला कर रहे हैं, और रोते क्यों हैं, अरे वो नाक दबाकर प्राणायाम करने वाले योगी कितने मूर्ख है, इतने सालों साल तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक किरण भी नजर नहीं आता है उनके भगवान के 20 लाखों से निकलने वाला, एक किरण भी दर्शन नहीं होता है, और वही भगवान यहाँ पर लटक रहे हैं, वो क्यों देख नहीं रहे इसको, तू वहां नाक दबा के बैठे, ये सोचकर नारद मुनि रो रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला यहाँ पर होती है, भगवान क्या कहते हैं, इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। तो यहाँ पर जो लीला की भगवान ने, उससे उन्होंने सारे ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया, आनंद कुंडे। और आगे क्या कहते हैं, बाकी सारे तपी ध्यानी जितने भी लोग हैं योगी, उन सबको बता रहे हैं कि आपके योग वोग से ज्ञान से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, मैं केवल प्रेम के वश में आता हूं, जिसके मन में प्रेम है उसके लिए मैं वश में आता हूं, उसके कंट्रोल में आता हूं, ये बता रहे हैं वो, सत्यव्रत मुनि समझा रहे हैं, ये सब लीला करके वो क्या दिखा रहे हैं, मुझे प्राप्त करना है तो बहुत लंबे लंबे मार्ग भी है लेकिन बहुत मुश्किल है वो सब, योगी भीर ध्यान गम्यम, दुर्लभ है सब कुछ, वो अगम्य है वो भगवान, वो यहां से प्रेम से डोल रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि छचिया पर छाछ के लिए अहिर की छोरिया भगवान को नाच नचाती हैं। अहिर का मतलब कौन है, जो गुर्जरी है ना, गुर्जरी एक जाति है यहाँ पर ग्वाल वालों की, अरे जो भगवान किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, वो भगवान इनके बालों में उनको बांधते हैं, वो लोग लटकन में, और लटकाते हैं उनको। और छछियावर छाछ का जानते हैं मतलब क्या होता है? छछिया मतलब जो दही जमाने के लिए कितना दही लगता है उतना उसको छछिया कहते हैं ब्रज भाषा में। वो केवल ऐसा इतना ही होता है, ओके, उतना दही उसको देते हैं और कहते हैं नाचो अभी तू, तो फिर वो ठुमक ठुमक के नाचता है, फिर थक जाता है तो वो कहते हैं अरे इतना मोटा है थोड़ा नाचने से अच्छा रहेगा, वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। फिर वो नाचता है, थकता है, फिर उसको थोड़ा और दही देते हैं और फिर वो नाचता है। ऐसे उसको कई बार नचाते हैं। सोचो आप कौन है वो नचाने नाचने वाले, कौन है? भगवान है स्वयं। उनके इशारे पे यहाँ पर पत्ता भी हिलता है, उनके इशारे से हिलता है, हर वस्तु उनकी इच्छा से हिलती है। वो गोपियों के इशारे पर नाच रहे हैं केवल प्रेम की वजह से। मैया उनको डांट रही है, यहाँ पर वात्सल्य भाव है, सख्य भाव वात्सल्य भाव है, लेकिन सख्य और वात्सल्य भाव में भी लेवल्स होते हैं। तो वात्सल्य भाव में सबसे टॉप पर यशोदा देवी है, उसके बाद में बड़ी बूढ़ी गोपियाँ हैं, उसके बाद में पहले यशोदा माई हैं, फिर रोहिणी देवी है, फिर बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं, फिर नंद महाराज हैं, और उसके बाद में बाकी सारी ब्रज की गोपियाँ हैं, और उसके बाद में फिर कुंती देवी वगैरह वगैरह, उसके बाद में देवकी, उसके बाद में वसुदेव, उसके बाद में कुंती, ऐसे वात्सल्य का प्रमाण है। बट इन सभी लिस्ट में किसी ने भगवान को डांटने का क्या कहते हैं उसको हिम्मत नहीं किया। केवल एक ही व्यक्ति है यशोदा देवी जो भगवान को डांट सकती थी। रोहिणी भी जाती थी बुलाने के लिए खेलने के समय, आ जाओ बाबा आ गए घर में, क्या कर रहे हो? वो सुनते ही नहीं थे। तो आपको कहती थी दीदी आपको ही जाना पड़ेगा, तो यशोदा देवी आते ही हे सड़क छाप क्या कर रहे हो, ऐसे कहा बाबा ने तुमको, कब से आकर बैठे हुए, कितना मैल हो गया, कितना तुम बंदर की तरह बन गए हो, बंदर के साथ रहते हुए बंदर जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी बन गई है, चलो घर पे, बाबा कब से बैठे हुए, यही सिखाया तुमने। डांटते तो तुरंत धर के भाग जाता है वो। फिर बार बार बोलते हैं अच्छा मैया के बहाना बनाकर हारते हुए भाग रहा है, अगर हारते हुए भागोगे कल तुमको खेल में नहीं लेंगे। और भगवान जिससे मूर्तिमान भयभीत है वो ग्वाल बालों के इस धमकी से डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं खेलने के लिए। फिर मैया डांटती है, फिर ग्वाल बाल डांटते हैं, फिर मैया डांटती है, फिर ग्वाल बाल डांटते हैं, देखो कैसी परिस्थिति होगी भगवान की। हाँ सिंपल से ग्वाल बाल और मैया डांट रही है और वो सोच रहा है कहाँ जाऊँ अभी। आखिर में मैया कैसा चले जाते हैं हार कर। भगवान के लिए यहाँ पर ग्वाल बालों की धमकी सबसे बड़ी धमकी है, सोचना है इसके बारे में, चिंतन करना है इस विषय पर। तो ऐसा ये नंदगांव है, इसमें अनंत लीलाएं भगवान की। तो यशोदा माता के बारे में बताना तो जरूरी है। यशोदा माता यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव है मेहरानो, उस गाँव से है, और वृषभानु महाराज ने उनका रिश्ता नंद से किया था। और उधर भी क्या कहे, दो कहानी बता देता हूँ। जब जन्म हुआ कृष्ण का, तब कुछ समय के बाद में बचपन में एक ब्राह्मण था, बहुत सारे लोग थे, एक ब्राह्मण का विशेष स्नेह था यशोदा के ऊपर। उसको इतना आनंद हुआ कि मेरी प्यारी यशोदा को भी बेटा हुआ है तो मैं जाऊँगा दर्शन करने के लिए, इसलिए वो दर्शन करने आया। तो मेहरानों से कोई दर्शन करने आ रहा है, इससे यशोदा इतनी खुश हो गई। उसे शास्त्र में लिखा है कि अगर नाई भी मैके से आता है ना तो बहुत बड़ी उत्सव जैसा आरंजन होता है। इवन इफ अ बार्बर कम्स फ्रॉम द मैका, यहाँ पर उत्सव की योजना हो जाती है। तो वो आता है तो उस दिन यशोदा अपने हाथ से गाय को दूध दोती है, अपने हाथ से गुलाब का इत्र डालकर खीर बनाती है, प्रेम से अपने हाथ से बनाती है, उसको सिंहासन में बिठाती है, उसके चरण धोती है, प्रक्षालन होता है, आरती पूजा होती है, फिर अपने हाथ से उसको खीर का भोग लगाती है। तो वो ब्राह्मण बड़े आनंद से अपने आंख मूंद कर अपने गोविंद को उसको भोग लगाने का प्रयास करता है। उतने में बालक कृष्ण रेंगते हुए आते हैं, उसके खीर खाने लगते हैं। तो यशोदा कहती है अरे तू ऐसा क्यों नटखट काम कर रहे हैं, चला जाए यहाँ से। तो वो माफी मांगती है कि अरे मेरा बालक थोड़ा सा नटखट है, मैं दोबारा बनाऊंगी। दोबारा दूध निकालती है गाय का, दोबारा उसकी खीर बनाती है और दोबारा उसको भोजन कराती है। दोबारा कृष्ण आते हैं, जैसे ही वो ऑफरिंग करता है तब बालक को बहुत डांटती है यशोदा मैया, तू कैसा बालक है, ब्राह्मण देवता है उसका अपराध कर रहा है तू। तो बाद में कृष्ण कहते हैं कि बार बार आंख मूंद कर मुझे को बुला रहा है, तो मैं नहीं आऊंगा तो कौन आऊंगा? उस समय उस बालक को, उस बालक के रूप में वो ब्राह्मण को कृष्ण का दर्शन होता है पूरे गौलोक वृंदावन के साथ, और वो बहुत रोता है ब्राह्मण। आपको कुछ समझता होता ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यही वो ब्राह्मण है जो गौरांग महाप्रभु के लीला में भी आया, और तब भगवान उसको बताते हैं कि तू नंद भवन में भी आया करता था। वही ब्राह्मण है जो मेहरानो गांव से था, उसने अवतार लिया महाप्रभु लीला चैतन्य की लीला में, और वहां पर वो नवद्वीप में भी आया था। फिर एक बार अपने बालकों को लेकर रोहिणी यशोदा अपने मायके चली गई, और दिन भर वहां के दोस्तों के साथ में कृष्ण बलराम बहुत खेले। अब जानते हैं ना बच्चे लोग कैसे बहुत खेलते, बाद में बोलते मैया पाँव दबाओ ना, बहुत पाँव दुखते उनके उछल के कूद के। तो ऐसे ही पाँव दबाया उनको और गोद में ले लिया यशोदा ने नंद कृष्ण को, रोहिणी ने बलराम जी को। तो कृष्ण बोले मैया कुछ कहानी सुनाओ सोने के लिए। तो मैया ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया रामायण की, पर मैया को क्या मालूम कथा के बाद में नींद आएगी कि एक्साइट हो जाएंगे। तो कथा उनकी पहुंचते पहुंचते आ गई, रावण ने सीता को हरण किया। ऐसे करते ही गोद से उछाल कर भगवान उठ गए, ऐसे बोलते लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष लेके आओ। तो उधर से बलराम जी उठ गए और वो लक्ष्मण के आवाज में आ गए, लक्ष्मण धनुष लेके आओ, अभी मैं रावण का वध करता हूँ। तो मैया बोला अभी क्या हो गया अचानक से, दोनों को क्या हो गया? और ऐसे सांस उनकी ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा धड़कन बढ़ रही है, ऐसे क्रोध में दिख रहे हैं। और अचानक दोनों ने कृष्ण बलराम ने राम लक्ष्मण का रूप लिया, नीले रंग के कृष्ण हरे रंग के राम बन गए, बालक राम और लक्ष्मण जी बलराम लक्ष्मण जी बन गए। दोनों ऐसे तान के खड़े धनुष, तो दोनों एकदम बिविल्डर टोटली, ये क्या हो रहा है? तो फिर उन्होंने थोड़ा शांत किया उनको, तो वापस वो कृष्ण हो गए और फिर सो गए, उनको सुला दिया। और रोहिणी से बात कर रहे हैं, अभी देखो माधुर्य के बीच में ऐश्वर्य का प्रकट हो गया ना, ऐश्वर्य प्रकट हो गया, विष्णु ऐश्वर्य प्रकट हो गया। तो यशोदा देवी रोहिणी से पूछ रही है अरे क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं तो ऐसे ही कथा बता रही थी और सो भी रहा था, वो अचानक क्या हो गया उसको? वो बोलते नहीं नहीं कोई चिंता मत करना, देखो माधुर्य का प्रभाव इतना है कि ऐश्वर्य का प्रभाव टिक नहीं सकता वहां पर। तो रोहिणी क्या बोल रही है, देखो ऐसा है ना, वो दिन भर बहुत सारा खेल खेल में ना ड्रामा करते रहते हैं, वरा लीला मत्स्य लीला ये लीला वो लीला, तो उनको उसकी याद आई होगी नींद में उठते हुए, तो उठकर खड़े हो गए होंगे ऐसे करके। यशोदा को भी, यशोदा को बहुत एक्साइटमेंट हो गया ना, उसको नींद नहीं आ रही रात तक, ये क्या हो गया अचानक, शी वॉज अवेक। इसलिए आप मेहरानो गांव में जाएंगे तो मेन मंदिर में राम और लक्ष्मण का दर्शन है, तो आपको लगेगा यहाँ पर तो यशोदा का गांव है, उसमें क्या होना चाहिए ऐसे, कारण यहाँ पर भगवान ने उनको राम और लक्ष्मण का दर्शन दिलाया था, इसलिए वहां पर दर्शन राम लक्ष्मण का है। यशोदा कुंड भी वहां पर है बहुत सुंदर, और यशोदा का विग्रह भी है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं पावन सरोवर में। तो पावन सरोवर का नाम पहले नंद सरोवर था, और वहां पर नंद महाराज का वो निजी कुंड था, उसमें यशोदा देवी का एक प्राइवेट घाट भी था जो आज भी वहां पर यशोदा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी घाट पर यशोदा देवी ने राधा रानी के लिए कृष्ण का भोजन बनाने के लिए एक मीठे पानी का कुआं बनाया था। पावन सरोवर जो है वो खारे पानी का है, और पारी उसको लगकर जो कुआं है वो मीठे पानी का है। ये सब चमत्कार जो है ब्रज में ही हो सकता है। तो इसमें रोज नंद बाबा सुबह स्नान करते हैं भोर में, उनके बहुत सारे कुंड है निजी, लेकिन ये उनका प्रिय कुंड है। ये कुंड ऑल्सो ये कृष्ण के सत्य लीला का नंबर 2 का प्रिय कुंड है, यानी उनका प्रथम जो प्रसन्न का कुंड है वो ग्वाल पोखरा है जो गोवर्धन में है। सख्य लीला उनको वहाँ करना बड़ा आनंद आता है, और नंबर 2 का प्रिय स्थान है नंद सरोवर और पावन सरोवर। तो एक वैशाख महीने में शुद्ध द्वितीया का दिन था, और मैया उस दिन मठरी बना रही थी, मतलब क्या ड्राई आइटम। तो कृष्ण आए बोले मैया मठरी क्यों बन रही है, नहीं पहले बोले ये क्या बन रहा है, तो बोले मठरी बना रही हूँ। तो मठरी क्या होता है, तो जब लंबा सफर होता है ना तो वो सूखा आइटम बनाते हैं ताकि बहुत दिन टिकता है वो। तो लंबा सफर का कौन जा रहा है लंबे सफर पे, तो कह रहे बाबा और सब ग्वाल बाल बड़े जो हैं गोप वो सब त्रिवेणी प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए। उधर उधर क्या होता है, तो 3 नदियों का मिलन है, वहाँ पर स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो लाला को ये कहानी अच्छी नहीं लगी ये प्लान, तो बाबा से मिलने के क्यों आप जा रहे हैं प्रयागराज? बोले बेटा तुम्हें क्या पता कितना महात्म्य है उसका, इसलिए हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाबा एक काम करो, आज तो द्वितीया का दिन है, कल का दिन अक्षय तृतीया का दिन है, तो कल के दिन में जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। फिर कुंकू को आवाज क्यों आ रहा है इसका? अपने आप ही देखो कुंकू को आवाज आ रहे
हैं।
आप थोड़ा सा आवाज कम करना उसका, थोड़ा सा एकदम। तो बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा आइडिया है, कुछ बोला आइडिया तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कल जाएंगे, तो रात को सोए और अगले दिन अक्षय तृतीया के दिन सुबह जब भोर में उठे, अंधेरे में, तो अंधेरा होता है बहुत, 4 बजे जब नंद सरोवर स्नान करने गए तो इतना बड़ा सीन देखा उन्होंने कि उसमें एक बड़ा विशाल व्यक्ति है, राज वस्त्र राज मुकुट पहनकर कुंड में स्नान कर रहा है, थोड़ा प्रकाश भी उसके शरीर से निकल रहा है, थोड़ा क्यों बताता हूँ बाद में। तो बोला ये हमारे राज्य में तो नहीं है, हमारी प्रजा में से तो नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति है, कौन हो सकता है। पास में गए तो देखा तो अद्भुत कार्य कर रहा है वो, नंद सरोवर में डुबकी लगा रहा है, नंद सरोवर के किनारे में जो रज है उसमें लोटपोट हो रहा है, फिर वापस कुंड में आ रहा है और फिर वापस रज में लोटपोट हो रहा है। ऐसा स्थान तो कोई करता नहीं ना, एक बार डुबकी लगाया बदन पोछ लिया चले गए, ये तो अजीब कार्य कर रहा है, हाथी की तरह। हाथी कैसे करता है? स्नान करता है, फिर कुंजर स्नान, फिर उसमें मिट्टी का स्नान करता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, तो उन्होंने पूछा महाराज जी आप कौन है? तो कहते हैं मैं स्वयं प्रयागराज हूँ। बाप रे, दंडवत थोक दिया उधर ही तुरंत। और लेकिन आप आए हमारे राज्य में, बहुत हमारा सम्मान है, हमारा वंदन स्वीकार कीजिए, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप कर क्या रहे हैं? आप स्नान कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये क्या रहस्य है? वो कहते हैं ये ब्रज की रज है, जहाँ पर हमारे भगवान के चरण रज लगी हुई है, और यहाँ का पानी जो है इतना पवित्र है कि हम साल भर सेवा करते हैं, हमारे अंदर लोग स्नान करके पाप छोड़ते हैं और हम एक दिन कैजुअल लीव लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, हमारे लिए एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन हम लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, अपने जितने पाप अंदर आ गए हैं उनको धोकर स्वच्छ होकर पुनः तेज प्राप्त करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा तेज, क्योंकि पहले कुछ स्नान करके वो तेज अपना प्राप्त कर रहे थे, पुनः जब आए थे वो तो पूरा निस्तेज रूप में आए थे, क्योंकि सब लोगों का पाप झेलकर, है ना, चैतन्य महाप्रभु भी जब जगह मजा का पाप लिया तो काले हो गए थे ना वो, तो वैसे ही वो कर आए थे वो, लेकिन जब ये आए तब तक कई बार डुबकी लगा चुके थे, रज में स्नान कर चुके थे, तो धीरे धीरे उनका तेज वापस आ रहा था। कुछ देर के बाद पूरा नंद सरोवर प्रकाशित हो गया। बोला यहाँ पर हम लोग आकर अपना तेज प्राप्त करते हैं, अपने पापों से जो जमा किया हुआ है लोगों का उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हो गया, उन्होंने पल्ली पार देखा तो बहुत सारी देवियाँ वहाँ पर स्नान कर रही थी, सुंदर सुंदर युवतियाँ, आदि निस्तेज आदि तेज तेज में। तो पूरा पार करके वहाँ चले गए, पूछे देवियाँ आप कौन हो? तो कह रहे मैं गंगा हूँ, सरस्वती हूँ, यमुना हूँ, शरयू हूँ, सिंधु हूँ, कावेरी हूँ, इंद्रायणी हूँ। 50 सब लोगों ने हजारों नदियों का नाम लिया, उन्होंने सबका परिचय दिया, और वो लोग भी वही कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, रज में स्नान कर रहे हैं। तो वही भी कहते हैं आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि दुनिया भर में हमारे अंदर लोग स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, हम एक दिन यहाँ पर आते हैं इस दिन और अपने आप को शुद्ध करके चले जाते हैं। तो नंद बाबा ने इलाहाबाद का टिकट कैंसिल कर दिया, रिफंड भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये सारे लोग हमारे यहाँ आके स्नान करते हमें वहां जाने की जरूरत क्या है, तो जितना मटरी बनाया था घर पे ही खा लिया सफर का जो सब खाना था वो घर पे ही समाप्त कर दिया। तो ऐसा ये नंद सरोवर जो उसके बाद पावन सरोवर बना, वहां पर एक ऐसा स्लोप है, वहां पर कृष्ण भगवान अपनी गायों को बछड़ों को पानी चलाने के लिए पिलाने के लिए लेके आते हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आके स्नान किया हुआ है, वहाँ पर उनकी भजन बैठक है। वल्लभाचार्य जी जो है पुष्टि मार्ग के, वहाँ पर उन्होंने भागवत सप्ताह किया है और भजन भी किया है, वहाँ की उनकी बैठक भी वहाँ पर है। और पावन बिहारी का मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर वो लीला का याद करते हुए पावन बिहारी का विग्रह स्थापन किया गया है। ऐसा सुंदर स्थान है, कितने स्थान है वहाँ पर, पावन बिहारी जी, राधा जी का कुआं, यशोदा घाट, वल्लभाचार्य की बैठक, चैतन्य महाप्रभु की बैठक, और एक जगह है वहाँ पर सनातन गोस्वामी जी, जब उन्होंने मदन मोहन जी का बंदर बनाना वहाँ आरंभ हो गया तो कंस्ट्रक्शन साइट से मुक्त होने के लिए वो नंदगांव में आए थे बीच में एक बार, और नंदगांव में उन्होंने भजन किया है पावन सरोवर के किनारे, तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी भी है। उसी के बाजू में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनकी भी भजन कुटी है, जिन्होंने चैत प्रभुपाद जी के संन्यास में कीर्तन किया था। और हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में आए थे, जब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उन वहाँ पर भजन किया हुआ है उसी जगह पर। और ये दिन भर ऐसे कहते हैं कि वो कभी सोते ही नहीं थे। आप कभी भी उठकर देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे शाम को दिन में दिन भर भजन करते थे। वो कभी सोते हुए दिखाई नहीं पड़े, इतना तक कि उनको कोई भाषा भी बोलने आती है भी पता नहीं था, क्योंकि केवल ही भगवान का नाम ही लेते थे वो। तो आप वो जर्नी होम पढ़िए, उसके अंदर लीला है उनकी। टुडे व्हाई डिडंट यू कम फॉर मंगल आरती, तो उनको लगा कौन बोल रहे हैं, इनको तो बोलते हो सुना नहीं, वो भी अंग्रेजी में। तो मुड़के देखा तो ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर अगेन अपना कुछ करने लगे काम। टुडे व्हाई डिड नॉट यू कम टू मंगल आरती, तो बाद में पता चला कि वही बोल रहे हैं हरकिंचन कृष्णदास बाबा, और वो अंग्रेजी भी अच्छी आ रही है। तो फिर बाद में उनकी अच्छी पहचान थी, अभी भी उनका देहांत हो गया। वो मथुरा के जो है ना केशव गौड़िया मठ है, वहाँ पर भी निवास करते थे। तो ऐसा ये पवित्र स्थान यहाँ पर है। उसके आगे हम जाएंगे तो मोती कुंड है। अच्छा, पावन सरोवर का महात्म्य सुनिए आप। पावन सरोवर में सभी धामों ने आश्रय लिया है। ब्रज में जितनी भी 68,000 धाम है, वो सबने अलग अलग जगह अपना आश्रय ग्रहण किया है। एक है पावन सरोवर, एक है विमल कुंड, एक है राधा कुंड, श्याम कुंड। गंगा जी ने उधर स्थान प्राप्त कर लिया है मानसी गंगा के रूप में। ऐसे जगह जगह पर सब तीर्थों ने अपना अपना, द्वारका ने कोशी में अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ ने काम्यवन में स्नान किया हुआ है। शिव जी ने वहाँ पर चरण पहाड़ी के रूप में स्थान ग्रहण किया हुआ है। तो पावन सरोवर में जो पक्षी पावन सरोवर के ऊपर से उड़ता है ना, उसको भी प्रेम भक्ति वाला मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे लिखा हुआ है। पक्षी जब उड़ता है पावन सरोवर के ऊपर से, केवल उड़ने से उसको परम गति प्राप्त होती है। फिर ब्रज भक्ति विलास के अनुसार लिखा है कि नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने अपने आंचल की गांठ बांधकर वहां पर स्नान किया था, दोनों ने मिलकर। और कृष्ण के जन्म के ऊपर उसी स्थान पर नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया था, ये उसका महात्म्य है। तो मोतीकुंड उसके बाद में है। मोतीकुंड में जब भी राधा रानी के हाथ पीले किए थे यशोदा मैया ने यहाँ पर, तो वहाँ से फिर घर गए थे। फिर बहुत लंबी लीला है वो, हमने बरसाने में कही थी वो। और फिर मोती वहाँ पर भेजे थे गिफ्ट के रूप में। वो मोती जब यहाँ पहुँचे तो 1,00,000 मालाएँ थी। तो वो मोती इतने इतने सुंदर थे और इतने ऐश्वर्य संपन्न थे, इतने क्या कहते हैं उसको, हाईएस्ट क्वालिटी के थे, कि नंद बाबा यशोदा मैया सोचने लगे कि हमको अगर वापस कुछ गिफ्ट भेजना है तो हमारे पास तो इतने योग्यता के मणि है ही नहीं। ऐसे वो चिंता करके डिस्कस कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान वहाँ पर आए, कहे कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, थोड़े मोती मुझे दे दो, मैं खेत में बो दूंगा उसको, फिर ऐसे ही मोती उगेंगे, फिर दे देना वापस उनको। तो वो ठहाका मार के हंसते हैं सब लोग, आप लोग नहीं हंसे इतने जोर से। तो वो ना मना करते हुए अंदर रख दिए सब कुछ। कृष्ण भगवान में रात में आकर कुछ मालाएं, उसमें 1,00,000 मोतियों की मालाएं थी, कुछ मालाएं चोरी कर ली उन्होंने, तोड़ के उसको घर के पीछे के आंगन में बो दिया। तो दिन अगले दिन जब उठे तो देखे कुछ मालाएं कम है उसके अंदर। तो उनको चोर को ढूंढने की बाहर के जाने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस थाना में खबर करने की जरूरत नहीं, घर में ही चोर बैठा है। तो उसको बोलते कन्हैया मोती किधर है, आपने चोरी किया उसको। तो कन्हैया कहता है मैं चोरी नहीं की, मैंने उसको लिया, आपको मैंने कल कहा था ना, आपने नहीं माना, लेकिन मैंने सोचा कि करना ही चाहिए ऐसे। इतनी बड़ी समस्या आपको कि इतने मोती हम कैसे पैदा करेंगे इतने इतने क्वालिटी के, इसलिए मैंने कुछ हार लिए तोड़कर, अरे तोड़कर सोच के उनका दिल ऐसा हिल गया, और पीछे आंगन में बो दिए हैं, और मैंने उसको अच्छी तरह दूध दही का सिंचन भी किया है, ब्रज रज का सिंचन किया है, दूध दही का सिंचन किया है, अभी पूरा खेत मोती से लहरा रहा है। तो आप लोग नहीं हंसे, लेकिन नंद महाराज यशोदा माई बहुत जोर से हंसे, बड़े ये बालक है बेचारा, उसको क्या मालूम, मैंने कुछ धान्य वान्य बो दिया होगा, उसके बचे हुए कुछ आया होगा, नहीं नहीं चलो 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 हम दिखाएंगे अभी क्या है, बाल हट है कृष्ण का हट है तो क्यों ना पूरा करें। इसलिए वो जाते हैं अपने घर के पीछे आंगन में, तो क्या देखते हैं, पूरा खेत जो है ना वो अनंत मोतियों से लहरा रहा है। तब वो हंसना बंद कर देते हैं और मोती बिनना आरंभ कर देते हैं।
अभी वो बालक है, इसको क्या पता है, ये सब बातें समाप्त हो जाती है। अभी तुरंत मोती बिनकर बैलगाड़ी भरते हैं और फिर उनको भेज देते हैं। तो मोती कुंड जो है वहाँ किनारे पे भगवान ने मोतियों की खेती की थी, मोती बोकर मोती उगले थे। फिर वो खेती जब की कर वो बैलगाड़ी में भरकर जब पहुंचा दिया गया ब्राह्मण के साथ बरसाने में, तो राधा रानी वो मोती लिए और डबारा गांव में बोए, तो क्या आया उसमें से? कांटे आए, उसमें से डायमंड्स आए, डायमंड्स। उसका नाम रत्नकुंड है जिसके किनारे में राधा रानी ने उन मोतियों की खेती की। कृष्ण भगवान ने मोतियों से मोती बनाए, राधा रानी ने मोतियों से हीरे बनाए। बोलो राधा रानी की अधिक शक्तिशाली कौन है? आवाज नहीं आ रहा है, कौन है? कौन है? हाँ, अभी आपको समझ में आया। कोई बोल रहा है कांटे बना दिए, क्या तुम लोग सोच रहे हो? एनीवे, वो एक अलग लीला है माल्यारी कुंड की, उसमें भी ये लीला होती है, बाद में बताएंगे कभी। तो उसके आगे एक स्थान है, एक इधर अंदर एक जगह है, उसका अंदर माट नाम है उसका। यशोदा माई के बहुत बड़े बड़े मटके थे, हमारे जैसे छः छः फीट के आदमी भी अंदर डूब जाएंगे उसके, इतने बड़े मटके थे। उसमें वो मंथन किया करती थी, ऐसे बहुत मटके हुआ करते थे, अभी सब लुप्त तो हो गए, एक ही बचा हुआ है। इतना बड़ा मटका है कि हमारे जैसे आदमी अंदर जाएगा तो भी उसके अंदर जाएगा, उसके ऊपर में मटका रहेगा। फिर उसके आगे एक जगह है आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव शंकर भगवान जैसे, देखो भगवान है ना, गौलोक में रहते हैं तो उनका 16 वर्ष का ही शरीर रहता है, 16 वर्ष योग बनकर रहते हैं, वो किशोर अवस्था में रहते हैं। राधा रानी भी उसी अवस्था रहते हैं। तो गौलोक वृंदावन में एक कमी है, वो ये है कि भगवान का बाल रूप का दर्शन वहाँ पर नहीं है। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ पर दर्शन लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर गोद का बालक, नवजात शिशु, दूध पीने वाला बालक, रेंगने वाला बालक, तोतले तोतले बोलने वाला बोल बोलने वाला बालक, और लड़खड़ाते हुए चलने सीखने वाला बालक, ये सब दर्शन जो है यहाँ पर होता है। तो जब भी पृथ्वी तल पर भगवान अवतार लेते हैं तभी सारे देवता भेष बदल बदल कर आते हैं। इंद्र आदि सभी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भवानी देवी, गणेश जी, सब लोग आते हैं। जब जन्म हुआ था ना तो नंद भगवान के महल में सब लोग दर्शन करने आए थे, तो शंकर भगवान नंदी को लेकर आए थे। नंदी की पूंछ पकड़ कर खड़े हैं, क्यों बताओ? क्योंकि नंद बाबा बड़े मूड में गाय बैल का दान कर रहे थे, अगर ये भी जाएगा दान में तो मैं क्या करूंगा, इसलिए उसका पूंछ पकड़ के खड़े। और पार्वती देवी गणेश को चला कर लेके आई थी, जैसे भीड़ देखा और गोद में ले लिया, क्योंकि नंद बाबा हाथी घोड़ों का भी दान कर रहे थे, तो इसलिए गणेश जी को गोद में खड़े हैं। इंद्र भगवान नाच कर रहे हैं, ऐसा विचित्र वेश करके सब लोग आए कि पहचान में नहीं आ जाए, ऐसा है सब। सची माता के बारे में भी ऐसा ही हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था ना निमाई का, तभी भी ऐसे बड़े बड़े लोग भेष बदल कर आए थे उसमें, और वो देख रही है कि ये हमारे गांव के नहीं है, ये दूर बाहर के लोग है, मैं चाहती हूँ पूछना कि ये कौन है, समझ लो कि ये कौन है, ताकि उसको सत्कार करूँ। इतनी इतनी भीड़ थी ना वहाँ पर, इतनी बिजी थे, और लोग भी अपना परिचय देने के मूड में नहीं थे, उनको खाली कृष्ण का इस युग में, महाप्रभु का उस युग में निमाई का दर्शन करना था। और वो सोचती रह गई कि कौन थे ये लोग, और वो आए, उनके साथ आए, चरणों का स्पर्श किया, बालक को गिफ्ट दिया, आशीर्वाद दिया, वो चले भी गए, वो पूछ ही नहीं पाई, वो संभ्रमित ही रह गई, सची माता भी और यशोदा भी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, शंकर भगवान आए। शंकर भगवान दो जगह पर आए, जब ये गोकुल में थे तभी वो आए हैं, वहां पर उनका नाम क्या है, चिंताहरण महादेव। और भगवान फिर उसके बाद में छटिकरा, काम्यमन और घूम घूम के नंदगांव में आए हैं गोपाष्टमी के पहले, मतलब 5 साल के उम्र के होने के पहले। तो यहाँ पर भी वापस शिव जी आए हैं, तो थोड़े से बड़े बालक थे, मतलब तभी एकदम 5 साल के नहीं थे, उसके पहले आए थे। तो दर्शन करने आए, ऋषि का भेष बदल के आए, और भगवती भिक्षाम देही तो मैया आई, रत्न माणिक मोती चावल सब लेके आई और देने लगी। बोले मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले मुझे क्या चाहिए? मुझे आपके लाला के दर्शन चाहिए। तो घंटी टोंग बजी कि इसको मैं इतनी कीमती वस्तु दे रही, तो लाला का दर्शन मांग रहा है, मतलब इसमें कुछ षड्यंत्र है। अभी तक तो बड़ी राक्षसी सुंदर युवती बनकर आई थी, फिर शकट बन के आए थे, फिर हवा बवंडर बन के आए थे, फिर कोई सांप बनकर आया था, फिर कोई बच क्या करें इसको, अलग अलग रूप धारण करके अभी साधु बनकर आए। ये कंस का आदमी है, कि हम जैसे भोले भाले ब्रजवासियों को भुलाने के लिए भटकाने के लिए अभी साधु का भेष बन कर आए, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली, चले जाओ यहां से, लेना है तो लो, तो गेट आउट। उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती, और वो तो मोती लेने के लिए खड़े नहीं वहां पर, वो लेते नहीं है। उनके मुंह पर जब दरवाजा बंद किया जाता है तो उनको बहुत दुख होता है, शिवजी महाराज को। अभी क्या क्या चांस है उनका, हमारे परात्पर भगवान जो है गोलोकेश्वर, वो माताजी कब्जे में है, उनके नियंत्रण में है, शी इज कंट्रोलिंग हिम, तो क्या चांस है मेरा, अगर इस माता नहीं, वो जो चीफ उनकी माता है, बहुत सारी गोपियां लेकिन साक्षात माता बना कर रही है, तो और कौन, पिताजी का भी अधिकार नहीं है उसको हाँ कहने का। तो निराश होकर जाकर बैठते हैं और रोते हैं वो, और रो रो कर लाला को पुकारते हैं, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोविंदा। अरे शिवजी की तरह पुकारो, रो रो के, सो सो के नहीं पुकारो, रो रो के पुकारो, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, पुकारो पुकारो, हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, दर्शन दे भगवान। तो इतना रोते हैं, देखो निराश अवस्था में फिर भी उनको आशा है, इसलिए उनका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। और भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, अपने प्रामाणिक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, कौन से भी अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय लीला कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जो ब्रह्मास्त्र है वो निकाला, वो कौन सा अस्त्र था, वो रोना, रोना शुरू किया तो खिलौना दिया गया, पहले स्तनपान किया गया तो कहाँ ले रहा है वो, तो मक्खन दिया गया रिजेक्ट, फिर खिलौना दिया रिजेक्ट, जो जो रोज के उपाय थे सब रिजेक्ट कर दिए भगवान ने, और जितना उपाय करने तो जोर से रोने लगे। ऐसी परिस्थिति आ गई कि सारे उपाय हार गए, वो बालक और पीक में रो रहे हैं। अब देखो जब बालक रोता है ना तो माता पिता डॉक्टर भी होंगे ना तो भी फेल हो जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। व्हेन चाइल्ड क्राइज आपका इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, डिलीट, क्या बोलते हैं उसको, क्रैश। तभी क्या करे, सारा नंदगांव ऐसा रुका हुआ है, मतलब एवरी एक्टिविटी स्टन्ड एंड स्टॉप्ड, सब कुछ छोड़ के सब लोग खड़े, लाला रो रहा है। उतने में पूर्णमासी आती है, वो भवानी देवी का अवतार है, उनका लीला में प्रवेश है, वो गोपियों के गुरु बनकर आई थी, सांदीपनी मुनि की पुत्री, नहीं सांदीपनी उनके पुत्री पुत्र हैं, उनकी माता बनकर गोपी बनकर आई, और सभी बड़े गोपियों के वो गुरु हैं। उनको बुलाया जाता है, क्या किया जाए मैया बताइए, तो कहती है कि वो जो आए थे ना बाबा, वो बड़े दूर से आए थे, बड़े सिद्ध बाबा हैं, वो बड़े चमत्कारी बाबा है, आपने उनको ठुकरा दिया, लेकिन अभी भी बैठकर रो रहे हैं वो, क्यों ना उनको ही बुलाया जाए, उनके पति है ना वो, उनको पता है किस कौन से उद्देश्य से आए हैं वो, कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए। तो वो जो मैया जिनको उन्होंने बालक के प्रेम और सुरक्षा की वजह से दरवाजे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, मतलब रिजेक्ट, कंप्लीट रिजेक्ट, उसी के लिए उन्होंने गोपियां भेजी। उद्देश्य क्या है, एक ही है, ठुकराने का भी और बुलाने का भी, क्या है, लाला कृष्ण, एक ही उद्देश्य है, उसको ठुकरा भी सकते हैं और गले भी लगा सकते हैं, अगर कृष्ण का हित उसमें निहित है। तो जाकि सखियां उनको बुलाती हैं तो भागकर शिवजी ऊपर पर्वत पर आते हैं, और जब भागकर आते हैं तो वो जैसे ही बालक के चरणों में स्पर्श करते हैं, बालक रोना बंद कर देता है। अभी मैया क्या बोल रही है, अभी मैया क्या बोल रही है, जब जब बाला रो लाला रोवेगो तब तब दर्शन दीजिए, अभी इसके आगे तुम कहीं नहीं जाना, यहीं रहना, मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हें सारा भोजन जो है लाला का महाप्रसाद सारा अभिषेक तो आपके ऊपर डालूंगी, आप यहीं रहो, और जब भी वो रोएगा तभी तुम आके उसको बहलाना। मतलब शिव जी क्या बने, खिलौना, खिलौना बने वो, जब बालक रोता है तो खिलौना देते हम उसको, वो महादेव है, वो उनके नृत्य करने से सृष्टि का अंत हो जाता है, ब्रह्मा जी उनके पिता है लेकिन ब्रह्मा जी भी उनको वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ऐसे महादेव है वो, लेकिन वो महादेव कृष्ण के लिए खिलौना बनने के लिए तैयार है। क्या आप लोग और हम लोग तैयार है क्या, यही सीखना है हमको यहां से, दो चीज सीखनी है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वो दुखी हो गए लेकिन निराश नहीं हुए, उनको आशा थी कि हम दर्शन करके ही जाएंगे और दर्शन भगवान ने कराया उनको। उनका दृढ़ संकल्प जो है वो हमको स्वीकार करना है। और दूसरी बात है कि भगवान के लिए कोई ऊंच नीच सेवा नहीं होती है, जिस भी सेवा से भगवान रीझ जाते हैं वही सर्वोच्च सेवा है। अगर खिलौना बनकर उनके लिए नाचना है, उनको रिझाना है, तो वही सर्वोच्च सेवा है। जो महादेव की इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं, उनका जॉब पढ़ेंगे ना आप, जो डिस्क्रिप्शन, तो हैरान हो जाएंगे आप। इतना बड़ा उनका सेवा है, इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा आदर सम्मान है उनका, लेकिन इतने बड़े पद पर होते हुए भी एक खिलौना बनने के लिए वो तैयार है। हमारी भी ऐसी तैयारी होनी चाहिए, तब हमारा आशेश्वर महादेव के बारे में सुनना और दर्शन करना सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। उधर एक आशेश्वर कुंड भी है, वहां पर बैठकर उन्होंने भजन किया था, बहुत सुंदर स्थान है वो। और कैसा है ना, एक बात समझना जरूरी है कि ये सारे देवता जो है ना, जैसे कि गणेश जी है, शिव जी है, पार्वती जी है, इंद्र जी है, इनका सब एक एक कार्यालयीन कार्य है, उनका ऑफिशियल ड्यूटी। और एक होता है उनका निजी जीवन। आपका कैसे, आप ये ऑफिस जाएंगे, किसी कंपनी में कुछ काम करेंगे, लेकिन घर में आपका कुछ जीवन अलग है ना, आप माता हो, पिता हो, बच्चा हो, किसका बेटा हो, किसका बहू, किसका दामाद हो, कुछ ना कुछ हो। और घर में आकर आप भजन करते हैं भगवान के नाम का, ऑफिस में ऑफिस का काम करते हैं, तो आपका एक निजी जीवन है, अपने भक्ति का, अपने प्रेम का, अपने परिवार का, और आपका एक ऑफिशियल जीवन है जो आपका ड्यूटी है, जो आप करते हैं कंपनी के लिए, अपने मालिक के लिए। वैसे ये सारे देवताओं का एक कार्यालयीन जीवन है। जैसे इंद्र का वर्षा करना, वरुण का जलाशय की रक्षा करना, वायु का वायु देना, और शिव जी का बहुत सारे काम है, लेकिन ये निजी काम उनका ये है भगवान की भक्ति। ये जब ब्रज में आते हैं तो छुट्टी पर आते हैं और ऐसे ऐसे लीला करते हैं। इसलिए ब्रज में जो आपको शिव जी दिख रहे हैं, आशेश्वर महादेव, ब्रजेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, जितने भी रूप हैं वो सब भजन के लिए आए हैं। यहाँ पर खिलौना बने हैं, वहाँ पर औरत बने हैं, गोपी बनकर वहाँ पर भगवान को रिझा रहे हैं। एनीथिंग, जो पड़ेगा वो, वॉट एवर कॉस्ट, आई एम रेडी, जो बोलो वैसा करने को तैयार है। खिलौना बना दो, औरत बना दो, नचाओ, कुछ भी करो, ये उनका भाव है। तो ये भाव को ग्रहण करना चाहिए, उनको जाकर बोलना नहीं चाहिए अच्छा पति दो, अच्छी पत्नी दो, शादी होने दो, है ना, सोमवार का व्रत करूँ कि शुक्रवार का करूँ, वो सब यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर केवल प्रेम भक्ति मांगना है उनसे, वो आशा का बल मांगना है, जो दृढ़ निश्चय का बल मांगना है उनसे, खिलौना बनने की तैयारी मांगनी है। बोलो आशेश्वर भगवान की। उसके आगे यहाँ पर सुंदर स्थान है, उसका नाम है टेरकदम्ब। और टेरकदम्ब ये स्थान है, अभी क्या बताएं आपको, गोपा अष्टमी नंदगांव का जन्माष्टमी के बाद वाला सबसे बड़ा उत्सव है। गोपा अष्टमी के लिए जितने विदेश में रहते हैं ब्रजवासी नंदगांव वाले, सब लोग वापस आते हैं यहाँ पर, कहीं भी होंगे वो गोपाष्टमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यहीं पर भगवान ने बच्चों का जिम्मेदारी संभाला था वत्सपाल के रूप में, और 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष होने के बाद में उनको गायों का भी भार दिया गया था। और केवल गाय बैल नहीं थे, भैंसे भी थी, बकरियां भी थे, सब प्रकार के जानवर थे उसके अंदर, और सब लोग साथ चलते थे भगवान के। और जब बड़े गायों का भार दिया गया तो बचरे भी छोड़ा नहीं जाना उन्होंने, वो रिटायर नहीं हुए, बोले हम जाएंगे, आपको आना हो तो परमिशन लीजिए, आप आइए, हमारे को मना मत कीजिए। तो बहुत बड़ा उत्सव है यहाँ का, कार्तिक शुद्ध अष्टमी के दिन, अगली अष्टमी जो आएगी ना शुद्ध पक्ष की, अभी शुरू हो गया शुद्ध पक्ष कार्तिक का, 5 तारीख को गोपाष्टमी का दिन है, नहीं 4 तारीख की गोपाष्टमी है, 5 तारीख की अक्षय नवमी है। तो संक्षेप में उसका कहानी ऐसा है कि सभी गाय जितने थे, गाय और बैल बड़े, वो सब लोग बोलते हैं मनुष्य की भाषा, ब्रज का लीला ही ऐसा है, पंछी बोलता है, मोर बोलता है, कोकिल बोलता है, सब लोग बोलते हैं। तो ग्वाल बालों को बोलने लगे, हमको अभी ना बोर हो रहा है आपके साथ घूमने में, हमको लाला के साथ घूमना है, देखो हमारे बच्चे कितने भाग्यवान हैं, कब से घूम रहे हैं, हमारा भाग्य कब होगा, हमने आपके साथ आना चाहते हैं। तो वो डिस्कस होता ना शाम को 84 गमा में, डिस्कशन तो होता ही है क्या क्या हो रहा है। फिर उस दिन क्या हुआ, सप्तमी का दिन था, रोज तो ग्वाल बाल उनको चिढ़ाते ही थे कि लाला तुम्हारे पिता का तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए अब तक बचड़े ही दे रहे, अगर विश्वास होता तो गाय कब की दे चुके होते, तुम तो केपेबल ही नहीं हो, ऐसा रोज 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 कोई चिमटा कर चिमटा लगाने लगा या सुगी लगाने लगा तो दुख होगा ना आपको। तो सप्तमी के दिन बहुत हो गया, टू मच, इतना उनको कोसा उन्होंने, इतना कोसा, इतना हंसे सब लोग। एक तो एक बार और भी हंसे थे बीच में कि बोलते तुम तो नंद बाबा के बेटे ही नहीं हो। बोला क्यों? नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी और तू काला। देखो बलराम कैसे है, रोहिणी गोरी, नंद बाबा गोरे, उनको पता नहीं वसुदेव के पुत्र हैं, रोहिणी गोरी, नंद बाबा गोरे, ये भी गोरा, लेकिन तू कैसा काला। उसका शास्त्र में एक रहस्य बताया है कि उनके जो नाना नानी थे ना, तो नाना जी काले थे और नानी जी गोरी थी, ये भी उसका वर्णन शास्त्र में दिया है। एनीवे वो छोड़ दीजिए आप। तो फिर वो बोले, फिर भाई कृष्ण इज पजल्ड नाउ ना, व्हाट इज दिस न्यू थिंग। तो कहते हैं वो बाल बाल भी बड़े चतुर है, वो आगे छोड़ते नहीं बात को। वो कहते हैं कि तुम जब भी, वो एक बार नंद बाबा वो बाजार में गए थे दोनों कुछ खरीदारी करने के लिए, तो जोर से एक बालक की रोने की आवाज आई उनको। माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं उनको बच्चा रोने से बहुत दुख होता है ना, वो ढूंढते ढूंढते गए कहाँ से आवाज आ रही है, अरे कहीं नहीं मिल रहा है लेकिन आवाज तो आ रही है। बाद में पता चला कि पेड़ के अंदर जो है ना होल बड़ा ढोली, उसके अंदर एक काला बालक बैठा हुआ है और जोर से रो रहा है, और इनको देख के और से जोर जोर से रोया। ये सब बालक कहानी बता रहे कृष्ण को। हाँ समझा, समझ आप क्या कर रहे हैं। तो वो दया आकर, करुणावश, दयावश उस बालक को उठाया और अपना बालक मानकर घर पे लाया, वही तुम हो। दिस इज लाइक अ एटम बॉम्ब, दिस इज लाइक अ अल्टीमेट अटैक। तो कृष्ण इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। पहले पहले तो ग्वाल बाल बहुत चतुर थे, वो महाराज जी बताते ना इंग्लिश में, ग्वाल बाल जी खाली हंस रहे उसको देखकर, इतना हंस रहे, हंस रहे। तो कृष्ण बोल रहे क्यों हंस रहे हो? तो बोलता इट्स टू फनी, इट्स टू फनी, वी जस्ट कांट टेल यू, इट्स टू फनी। समझ में आपको? बहुत मतलब वो हास्यास्पद है, लेकिन उसको जब बोलने को मजबूर किया तब ये कहानी ग्वाल बाल ने उनको सुनाई। तो कृष्ण इतने दुखी हो गए, इतना रोए, इतना रोए, और घर गए और इतना रो रहे। तो मैया बाबा पूछते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इट्स टू सैड, आई कांट टेल यू, इट्स टू सैड, बहुत दुखदायक ये बात है जिसको मैं कह नहीं सकता हूं। बाद में फिर रो रो के सिसकियां भर भर के रुके, तो बताइए कि ऐसे ऐसे ग्वाल बाल बोल रहे थे। तो मैया को ना बहुत टाइम लगा समझाने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तू तो बीच रात में आया था ना इसलिए काला, वो बलराम जी दिन में आए थे इसलिए गोरे, अरे भैया तुम मरे बालक हो, ऐसा नहीं नहीं ऐसा बताया ग्वाल बालों ने, ऐसा पूरा डिटेल में समझाया मुझे। तो बाद में फिर ना बहुत देर लगा उनको समझाने में, फिर रात को सो गया बालक। ये तो किस्सा हुआ ही था, ऊपर से अभी ये चालू हो गया। तो वो रात को, सप्तमी की रात को ना, देखो क्या होता है ना, यहाँ पर एक जगह है नंद बैठक, वो हमारे लिस्ट में है। नंद बैठक ऐसी जगह है कि जब वो बालों को लेकर जाते हैं ना ग्वाल बालों को चलाने के लिए, बैठे बैठे नीचे बैठ जाओ, तो वो यशोदा माई हर एक घड़ी में नंद भवन के शिखर पे जाती है और खिड़की से सूरज को देखती है। अरे सूरज कितना स्लो चल रहा है तू, कभी उतरेगा नीचे और कब मेरा बालक वापस आएगा। तो बार बार सूरज को कोस रही है, वो बार बार देख भी रही है कि अभी इधर आया, इधर आया, इधर आया, लेकिन जब नीचे उतरता है ना तो उनको रहा नहीं जाता है कि बालक पर्वत के नीचे आएगा और हम ऊपर रहेंगे और हम तब तक वेट करेंगे जब तक ऊपर आएगा, हम नीचे चलते हैं। ऐसे रोज वो सूरज का ढलना शुरू हो गया तो नीचे जाते थे, पूरा थाली वाली भर के मिठाई मक्खन जो भी है उनका आरती का सामान सब लेके, गोपियाँ छोटी छोटी गोपियाँ जो श्रुति गोपियाँ जो थी ना वेद गोपियाँ, वो सब श्रुति बनकर गोपी बनकर वहाँ पर आई थी, वो सब गोपियों को लेकर भाग रही नीचे और एक जगह पर आके बैठ जाते हैं, उनका नाम है नंद बैठक। उस जगह पर कृष्ण भगवान आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है दीप से, आरती से, भोजन देने से, जो भी देना है, और नंद बाबा के गोद में आके बैठते हैं, यहाँ कृष्ण यहाँ बलराम, ऐसे पाँव ऐसे ऐसे करके, एक पाँव इनका एक पाँव इनका, और दोनों बोल रहे हैं आज क्या हुआ, आज क्या बोलो, बाल बाल भी बोल रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत देर तक आदान प्रदान होता है, सब लोग बहुत बड़ 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 करते हैं और ऐसा 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 दोनों की सुनते हैं, फिर दिल भर गया फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर जाकर फिर स्नान होता है, अभिषेक होता है, फिर माखन मिश्री दुग्धपान सब होता है, उसके बाद लोरी गाई जाती है, फिर भगवान सोते हैं। ये सारा कार्यक्रम उस दिन नहीं हुआ, भगवान सीधे गए और जाके उल्टा मुंह करके सो गए। मतलब क्या गुस्सा आ रहा है, लोरी नहीं, मक्खन नहीं, दुग्धपान नहीं, स्नान नहीं, कुछ नहीं। और उस दिन घर पे क्या हुआ? बड़ी मीटिंग हुई, शांडिल्य मुनि आए, ब्राह्मण लोग आए, ग्वाल बाल भी आए। उन्होंने कहा कि अभी बहुत देर से गाय हमको बता रही है कि हमारा भी दिल नहीं आता हमारे साथ में जाने के लिए, हमको कृष्ण के साथ जाना है। तो शांडिल्य मुनि ने कहा कल का दिन बहुत पवित्र है, आप बड़ी गायों का जिम्मेदारी कृष्ण को दे सकते हैं। तो सब कुछ घर में अरेंजमेंट हो रहा है और कृष्ण को ये न्यूज़ देना है, बेटा आपको कल हम गाय देने वाले हैं बड़े बड़े। लेकिन बेटा नाराज है तो सुने बिना ही उनको मौका कहाँ दिया बेटे ने, तो बोले कल बताएंगे। तो कल सुबह उठकर वो लोरी सुना रही है, लेकिन लोरी ने क्या कहते हैं उसको, उत्थापन गीत सुबह का, लेकिन वो नहीं उठ रहे हैं। वो यहाँ से आके गा रहे तो वो उधर मुँह कर रहे हैं, इधर से गा रहे उधर मुँह कर रहे हैं। सोने वाले को जगाना आसान होता है, जो सोने का ढोंग करता है उसको उठाना मुश्किल है। तो क्या अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या करना है? अरे बोल उसके कान में, बोल आज की खबर बता दे उसको। तो मैया आके कान में खबर बता देती है कि आज आपको गायों का भार जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो झट से स्प्रिंग की तरह उठते हैं बेड से और एक्सप्रेस तैयारी करते हैं उस दिन, एक्सप्रेस। वो धीरे धीरे गीत गाते हुए नहीं, फटाफट तैयार होके आते हैं। तब तक तो क्या होता है ना, रोज क्या होता है, सुबह भगवान उठते ना, पहले उठ के अपना अलार्म दे दे सबको, मुरली बजाते हैं, वो मुरली की आवाज़ से सब लोग उठ जाते हैं। उस दिन अलार्म बजा ही नहीं, फिर भी ठीक समय पर ग्वाल बाल उठ गए और तैयार होके आ गए। इसलिए जल्दी उठाने का उठने का आदत कीजिए आप लोग, फिर अलार्म नहीं बजेगा ना, अपने आप जाग आती है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो वो आकर तैयार हो रहे हैं, सारी बड़े गाय जो है वो 108 झुंड में आके खड़े हैं उधर, उन सबको गोल्डन कैप लगाए उनके इस पर सिंह के ऊपर, मखमली चादर लगाई हुई है, मोर पंख लगाया पूछ को, पैरों में घुंघरू लगाए हुए हैं, गले में सोने की घंटा लगाए हुए हैं। ऐसा सुंदर हर एक गाय श्रृंगार करके 108 झुंड में खड़े हैं उधर, ग्वाल बाल सज सज के खड़े हैं। फिर ये एक्सप्रेस तैयारी करके कृष्ण आते हैं, शांडिल्य मुनि ब्राह्मण को मंत्रोच्चार कर रहे हैं और विधिवत गौ का जो जिम्मेदारी है वो दे देते हैं। और उस दिन ऐसा लिखा है गोपाल चंपू में कि सारे लाखों गायों की इंडिविजुअल पूजा की भगवान ने, कैसे की उनको ही पता इतने छोटे समय पर, लेकिन सभी गायों का प्रत्यक्ष उन्होंने एक एक गाय का पूजन किया है। और लास्ट में लास्ट का विधि मंत्रोच्चारण करके रक्त जड़ित जो छड़ी है लकुटी वो भगवान को दी गई, दैट मीन्स आप यू आर ऑथोराइज नाउ। फिर उसके बाद यशोदा आई, दो छतरी और दो जोड़ी जूता लेकर आई और कहे आज से बाद आप दूर जाएंगे, वहाँ पत्थर होंगे, कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, तो आपको कष्ट होगा, आपके मक्खन से भी अधिक मुलायम चरण कमल है। और गोपियाँ वहाँ पर रोती थी सोच सोच कर, कैसा होता होगा, कैसा होता होगा, कब आएगा वापस। तो वो कहते हैं कि सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास हर एक गाय के लिए छत्र और जूता है तो हम भी लेंगे। यथा गावो तथा गोपहा, जैसे गाय रहते हैं वैसे ही गोपाल को रहना चाहिए, ग्वाल पालन करने वाले। अगर आपके पास नहीं है तो हम भी नहीं पहनेंगे, है तो हम पहनेंगे। तो मैया कहते हैं हमारे पास इतने जूता नहीं है, इतना छतरी भी नहीं है, तो हम भी आपका जूता छतरी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उनको और दुख होता है कि कैसा होगा इतना दूर जाएगा। तो फिर वो चलने लगते हैं, अभी चालू शुरू उनका चालू हो गया गौचारण, लेकिन मैया और बाबा और बड़े बड़े गोप साथ साथ चल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अभी जाओ भी, क्योंकि रोज का कैसा होता था वत्सपाल के रूप में नियम क्या था कि नंद भवन के ऊपर की चोटी पर पहुंचेगा ना, वहां से चारों तरफ जितनी दृष्टि पहुंचती है वहां तक ही जाना है, मतलब यू आर अंडर कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड सुपरविजन। तो एक प्रकार का प्राइवेसी नहीं होता ना उसके अंदर, आपको पता है कि जहां पर भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं मैया देख रही है, उनको उससे बाहर निकलना था। तो बाद में मैया को कृष्ण ने कहा मैया अभी जाओ आप, हम आएंगे लौट के, चिंता मत करना। तो मैया वहीं खड़ी हो गई, सब लोग चले गए, यू नो यू आर फॉलोइंग एंड देन यू हैव टू स्टैंड देयर ओनली। आपके चारों तरफ से सभी ग्वाल बाल चले गए और दूर तक क्षितिज के पार, होराइजन के पार चले गए। तब ये बहुत रोई कि पता नहीं क्या होगा, ये गोपाष्टमी की लीला है। तो वो दिन ना भगवान पहली बार दूर चले गए तो बहुत थके ना, वो भी इतना दूर चलने का आदत नहीं। आपने कभी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, आप कभी कभी यात्रा में चलते हैं, लेकिन गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो इसलिए लास्ट में रखा है उसको ताकि आप ट्रेन में सो जाओ तो जैसे ही वो दूर गए तो थक गए वो, तो ग्वाल वालों ने दूर जाकर ना अपना क्या बोलते ना अपने स्पेस में अपने प्राइवेसी में इतना आनंद लिया, लेकिन कृष्ण के चेहरे पे थकान दिखाई दी। बोले ये थकान अगर नंद बाबा और यशोदा माई देखते ना कल कैंसिल कर देंगे। तो वो ना जैसे ही नंद भवन के पास आने लगे ना तो उन्हें जोर जोर से जोक मारना, हास्य परिहास और गीत गाना और हंसा हंसाना शुरू किया। आपको पता है हंसने से क्या होता है? हंसने से चेहरे की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है, चेहरा खिल जाता है और आप थके भी होंगे तो फ्रेश दिखते हो, इसलिए हमेशा हंसा करो। बोलो हंसो। हंसी हंसी से प्रसन्न वातावरण बना रहता है, सारे चिंताएं रोग मुक्त हो जाते हैं। तो इतना भगवान को हंसाया तो भगवान थके हुए थे फिर भी इसे फ्रेश लगने लगे। और फिर ये टेढ़ कदम जो पेड़ है ना, बड़ा पेड़ कदम का, वहाँ उसके पास में आए तो गायें सब इधर उधर आ रही थी अपने अपने। भगवान सभी के पेड़ के सबसे ऊपर की छाया में शाखा पर बैठ गए। उनके मुरली में 8 होल हैं और 8 स्वर हैं, उसमें छठा स्वर जो है ना उसके 2 परिणाम हैं, एक पत्थर पिघल जाते हैं और गाय को अपना अपना नाम सुनाई पड़ता है। भगवान ने छठी धुन बजाई और वो धुन के रूप में सुनाई नहीं पड़ी, हर एक करोड़ों गायों के कान में अपना नाम सुनाई पड़ा और वो नाम सुनकर कृष्ण पुकार रहे हैं, इसलिए भाग भाग के आई। कैसे आई? बड़ी बड़ी आंखें ऊपर देख रही हैं, कान ऊपर है, मुरली के कान सुन रहे हैं अपनी आवाज को, अपने नाम को, और पूंछ भी ऊपर है, सब लोग ऐसे देख रहे हैं। लेकिन कुछ गाय अपना नाम सुनकर भी नहीं आए, तो भगवान ने कहा आप सब लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। नीचे उतरे और सभी गायों के पास गए, पीठ थपथपा कर लेके आए। प्रभु जी क्या करके लेके आए? पीठ थपथपा कर लेके आए, क्योंकि वो सब गाय ना अटेंशन सीकिंग गाय थी, उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए था, इसलिए मुरली की आवाज सुनने के बाद भी अनसुनी करके ऐसा ही चारा खा रही थी वो। तो उनको लेकर आए भगवान, भगवान बहुत प्रेमी है, सबको लेकर आते हैं और वहां से फिर दोबारा मुरली बजाते हुए नंद भवन की ओर चलते हैं। तो ये टेढ़ कदम की लीला है। रोज वहां पर शाम को भगवान आते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और फिर गाते हुए मुरली बजाते हुए नंद भवन लौट के चलाते हैं। वहीं पर रूप गोस्वामी ने भजन का स्थान चुना, तभी गोविंद जी का मंदिर बन रहा था, तभी वो अपने शिष्य को देकर वो इधर आकर भजन कर रहे थे टेढ़ कदम। और वहाँ पर उन्होंने ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्तृ सामृत सिंधु, उपदेशामृत और वो दान केली कमुदी दान, बहुत सारे ग्रंथ वहाँ पर लिखे एकांत भजन में। और वहीं पर राधा रानी ने उनको एक बार दर्शन दिया था सनातन गोस्वामी के जन्मदिन के अवसर पर। राधा रानी स्वयं चावल दूध मेवा लेकर आई थी और अपने हाथ से खीर बनाया था और उनको सौंप कर गायब हो गई थी। सनातन गोस्वामी ने जब खीर खाई अपने बर्थडे वाली तो उनके आंखों से आश्रु आए, गदगद हो गए, वो पूछ रहे किसने बनाया, कहाँ से लाया। तो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया मैं बहुत बिजी था, वो ये लड़की आई, उन्हें सामान दे दिया, मैंने बना उन्होंने बना के दे दिया, कहाँ लड़की उसका वर्णन करो। तो वर्णन किया तो बोला राधा रानी स्वयं थी। कैसे भक्त हो आप? राधा रानी आयो, तुमने कहा मुझे टाइम नहीं, तुम बना लो, इतना भजन करते हो उनकी सेवा के लिए, उनको सेवा में लगा दिया, ऐसा डांट रहे हैं और खा ही रहे खुद। मतलब उनको अगर लगता है कि राधा रानी ने खुद का हाथ का बनाया हुआ, हम लोग ऐसा सेवा ले सकते हैं उनकी, तो उनको खाना बंद करना चाहिए ना। तो वो भी खा रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, डांट भी रहे ऊपर से। तो ये लीला भी वहीं पर हुई है। तो टेढ़ कदम बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही रमणीय स्थान है। वहां पर ग्वाल बालों की जो गौचारण लीला है उसका प्रथम मतलब एकदम प्रिय स्थान है भगवान का। उसके बाद में कृष्ण कुंड, यशोदा कुंड। यशोदा कुंड वो स्थान है जो नंद बैठक के बाजू में है। जब छोटा कृष्ण था ना बालक, तो मैया के साथ कृष्ण बलराम दोनों नहाते थे, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हो गए ना, तो गोपियाँ चर्चा कर रही है कि आजकल कृष्ण बलराम जो है वो बड़े शर्माने लगे हैं, उनके वस्त्र भी थोड़े थोड़े टाइट होने लगे हैं, बटन लगते नहीं हैं, और जब हम कपड़े उतारने का शुरू करते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी वो बड़े होकर शर्मा रहे हैं आपके साथ स्नान करने के लिए, इसलिए बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे अभी हो रहा है। बहुत लंबा वर्णन गोपाल चंपू में दिया उसका। तो बाबा को बताया कि आप एक उनके लिए अलग कुंड बनाओ। तो कुछ विधि साथ में, स्नान की विधि अलग, तो वो है कृष्ण कुंड। यशोदा कुंड में छोटी अवस्था में दोनों स्नान करते थे, कृष्ण कुंड में थोड़े बड़े होने के बाद स्नान करने लगे, फिर वापस कपड़े पहनने के लिए मैया के पास। यह स्थिति है। उसके बाद में मोर कुंड, वहाँ पर भगवान मोर बने थे एक बार, उनका नाम पड़ा मोर बिहारी, सुंदर कुंड है वहाँ पर भगवान ने मोर बनकर दर्शन दिया था। फिर अगला स्थान है उद्धव क्यारी, उद्धव क्यारी ऐसा उत्कट स्थान है। जब उद्धव जी आए थे तो उद्धव जी भगवान का मैसेज लेकर आए थे, तो वो सोचकर आए थे कि गोपियाँ सब दुखी हैं बेचारी, जब दुख होता है तो उनको योग सिखाना चाहिए, प्राणायाम करने से योग करने से दुख का नाश होता है, मन संतुलित हो जाता है। तो बड़ा ज्ञानी थे वो, बृहस्पति के शिष्य थे वो, बहुत बड़े, मतलब उनका क्या बताएं आपको, वर्ण कृष्ण का रूप, कृष्ण जैसा, भगवान के चचेरे भाई, भगवान के प्रधान सलाहकार मंत्री और बृहस्पति के शिष्य, क्या एक व्यक्ति में होना चाहिए, सब कुछ उनके पास था। और भक्तिमय जीवन में सब लोग कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, और ये तो उठते बैठते शिकार खेलते दरबार में, घर में, खाना खाने में, सोने में, उठने में, हर समय कृष्ण के साथ थे, इतने उनके इनका गौरव था उनका। लेकिन कृष्ण भगवान देख रहे थे कि उनको कुछ ज्ञान के विषय में ज़्यादा ही थोड़ा सा, एक्चुअली सर ये बताना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि सब भगवान की लीला है, भगवान तो हमेशा अपने ऐसे सर्वोच्च भक्त को ही चुनते हैं और उन पर अधिक अधिक कृपा करते रहते हैं। तो उनको लगा था कि इनको जो प्रेम प्राप्त हो गया है मेरे साथ रहते हुए, उसके ऊपर भी कुछ प्रेम है जिनका ज्ञान इनको नहीं है। तो गोपियों को सांत्वना देने के लिए बहाने उनको उनको भेज दिया उन्होंने। तो वो क्या सोच के आ रहे, देखो समझो डॉक्टर को विजिट पे बुलाया, तो डॉक्टर फोन पे क्या पूछता है, क्या हो रहा है उसको, पर चेस्ट में पेन हो रहा है, हाथ में हो रहा है क्या, हाथ में भी हो रहा है, जलन हो रही है क्या, जलन भी हो रही है, और क्या हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। तो वो क्या करेगा, हार्ट अटैक की दवाई साथ में लेकर चलेगा और सोचेगा जाकर क्या करूँगा मैं, प्लानिंग करेगा ना, वो कपड़ा पहनते हुए टैक्सी में बैठते हुए पहुँचते हुए। तो वैसे ये डॉक्टर जो है वो प्लान कर रहा है कि जिनका इलाज करना है मुझे उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी एक योजना बना रहा है, मैं योग सिखाऊंगा उनको। तो जैसे ही आया ना वो, संध्या का समय था और सब जगह पर गाय का दूध निकाला जा रहा था, और गाय के दूध निकालने की सुंदर कलेक्टिव साउंड सब जगह पर, सारे हजारों गायों का दूध का आवाज आ रहा था। वो साउंड सुन के ही ये पूरा पूरी तरह से विवल हो गया एकदम भाव से। उसके आगे देखा तो यमुना किनारे सब लोग ध्यान में बैठे हैं, गोपियां आंख बंद करके। तो सोच रहा है कि अच्छा है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इनको योग का है तो आगे सिखाना अच्छा रहेगा इनके लिए। देखो कैसे विचार करते लोग ना, वो अपने विचार में हैं। तो फिर ये गोपियों से पूछता है, तो फिर तो कहते हैं क्या ध्यान कर रहे हो आप, क्या ध्यान कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा कि हम लोग पहले बहुत सीधे साधे थे, हमारा हृदय भी सरल था, कृष्ण टेढ़े हैं, उस टेढ़े कृष्ण पर हमारा प्रेम हो गया, हमने उनको हृदय में बसा लिया, क्योंकि हमारा हृदय सीधा और ये टेढ़े, तो इनको फिट करने के लिए हमने हमारा हृदय भी टेढ़ा कर दिया, और अभी हम योग कर रहे हैं कि ये टेढ़ा हृदय में जो टेढ़े कृष्ण फंसे हैं उनको निकालने के लिए हम योग कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ये प्रकार का योग तो उन्होंने सीखा नहीं था कभी बृहस्पति के पास से। उन्होंने सीखा था कि जो कृष्ण हमको नहीं मिल रहे हैं, जो विष्णु हमको नहीं मिल रहे हैं, उनको हृदय में आकर बसाने के लिए योग जो होता है वो उन्होंने सीखा था, और ये जो बसे हुए कृष्ण है उसको निकालने के लिए योग कर रहे हैं। उधर ही वो क्लीन बोल्ड हो गए, उधर ही उसका पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि ऐसा योग तो हमने कभी देखा नहीं आज तक, इतना प्रेम। फिर आगे जाकर वो क्या कहे आपको, लंबी लंबी कहानियां हैं, बहुत बहुत घंटे लगेंगे, कोई दूसरा ग्रुप आके बैठा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। नंद भवन, एक इतना तो बताना जरूरी है, वो नंद भवन आया यशोदा मैया और उनको मिलने के लिए। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे ना किधर है, किधर है नंद भवन, किधर है नंद बाबा को मिलना है, तो पर्वत के पास थे खड़े, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ दो नदियां दिख रहे ना, उसके किनारे किनारे ऊपर जाएंगे तो नंद भवन पहुंच जाएंगे। तो उद्धव जी उस नदियों के धो दो बह रही नदियां जब ऊपर से आ रही हैं, उसके किनारे किनारे ऊपर चले गए तो नंद भवन में गए, तो वहां से नदियां आ रही थी। उसके आगे चले गए, आगे चले गए अंतपुर में चले गए, तो नंद बाबा यशोदा देवी बैठी हुई है, उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनकी दो नदियां वो थी जिनके किनारे किनारे वो ऊपर आए थे, और उनका जो है ना मति भ्रष्ट हो गई ये सब देख के कि वे क्या हो रहा है सब, इतना सारा प्रेम। तो वहां पर बहुत लंबा आदान प्रदान हुआ है, फिर गोपियां उनको मिली है, फिर गोपियां कहते हैं कि हम आपका, हमारा जो मंतव्य है ना वो इधर नहीं कह सकते आपको, वो आके एकांत में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो वो उद्धव कह रही जगह पर उनको ले गए, उनको एक दूर जंगल में एकांत में एक पत्थर के आसन पर बिठाया, क्योंकि वो तो राज वस्त्र पहन के आया था ना। जब वो आया था ना तो गोपियां भाग के गई थी, ये कृष्ण आए, कृष्ण आए। कृष्ण ने क्या किया, अपना रथ उसको दिया, अपना मुकुट भी उसको दिया, अपने वस्त्र भी उसको पहनाए। तो उनको लगा कृष्ण ही आए हैं, तो भाग के गए कृष्ण को मिलने, लेकिन पता चला कि कृष्ण नहीं है वो, तो थोड़ा पीछे हट गए। फिर बाद में मिले एकांत में, तो उसको सम्मान दिया उन्होंने। और जब अपना मंतव्य व्यक्त करना शुरू किया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जमीन पर लौट रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई गदगद हो रहा है, कोई खंभे जैसा बन गया है, ऐसे अष्ट विकारों का अनंत अनुभव उन्होंने किया गोपियों के इसमें। और वो समझ गए कि ये सब हमारे समझ के बाहर है, ये गोपियों की पाठशाला में अगली डिग्री लेने के लिए उनको भगवान ने भेजा था, प्रेम की पाठशाला में। फिर उनको लगा मैं इनको मैं कैसे बहलाऊं, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, इतने विचित्र प्रकार के अनुभव दे रहे हैं। तो उनको, उन्होंने क्या किया, जब ये बता रहे थे तब गोपियां सब नाटिकाएं भी कर रही थी, कृष्ण ने जो भी कुछ किया वो करके दिखा रही थी उनको। तब उनको समझ में आया कि इनको सांत्वना देने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, केवल इनकी सुनना है हमको, इनकी सुनते रहेंगे। क्योंकि जब वो कथा बताते कृष्ण की उनको क्या क्या हुआ था, तब वो रोना वोना बंद कर देती है, हंसती भी है और बड़ा आनंद में मशगूल हो जाती है। तो बेहतर यह है कि मैं उनको सुनता रहूं, मैं कुछ ना बोलूं। तो 6 महीने तक वो 2 दिन के लिए आए थे, वसंत की शुरुआत में आए थे, वसंत महीने पंचमी की शुरुआत में आए थे, 6 महीने वहां पर रहे। और गोपियों ने उनको सारी ब्रज की यात्रा कराई, सारी ब्रज की यात्रा कराई। वो यात्रा इतनी अद्भुत थी कि यात्री एक था और कथाकार करोड़ों थे, अनेक करोड़ों गोपियां कथा बता रही थी, एक यात्री था। और वो देखा कि मेरी यही सेवा है, इनको बोलते रहना, बोलते रहने के लिए प्रसंग निर्माण करना और सुनते रहना, जितना मैं सुनूंगा उतने वो बोलेंगी, उतना उनका दुख का निवारण हो जाएगा कृष्ण की याद में, कृष्ण की स्मृति में, कृष्णमय होने से। तो ये सब जो विषय था उनका विचार, वो उद्धव क्यारी में उन्होंने प्राप्त किया कि मेरे लिए अभी कोई उपाय नहीं, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिनको मैं शांत कर सकूं, इनके साथ जाना, इनके सुनते रहना, यही मेरा उपाय है। सारा उसका जो ज्ञान का जो भी था उसके मन में सब खत्म हो गया। और जब जाने का समय आया तो राधा रानी कहती है उनको, अरे तुम्हारे प्रियतम तुमको याद करते होंगे, तुमको जाना चाहिए वहां पर। इसका मतलब ये बहुत विशेष बात है कि गोपियों के संग में रहते हुए कृष्ण को भी उद्धव जी भूल गए, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं लेकिन कृष्ण की उनको ऐसी याद नहीं आएगी कि जाना है मुझे, अभी बहुत दिन हो गए, जाना है जाना है। गोपियों के संग में इतना आनंद में रहे, वो इतना आनंद में रहे कि उनको अपना मथुरा द्वारका का जो जीवन था उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई, ना हृदय में आस उत्पन्न हुई कि मुझे जाना है अभी वापस। तो राधा रानी ने उनको याद किया है, अभी जाना भी चाहिए आपको, जाओ अभी आप। तो उनके मन में विचार आया कि इनके मन में जो प्रेम है वो अगर प्राप्त करना है तो इनके चरणों की धूल हमको स्वीकार करना चाहिए। और मैं राज वस्त्र पहनकर आया हूं, अगर मैं इनकी चरणों की धूल लेने गया तो ये संकोच करेंगे, इनको बड़ा दुख होगा अगर इतना बड़ा व्यक्ति मेरे पैर छू रहा है। तो मैं उनको बिना संकोच दिए बिना उनकी चरणों की रज देना चाहता हूं। और उसके लिए एक ही उपाय है कि मैंने उनको ब्रज के लता पताओं पर, गुल्म लताओं पर, घासों पर चलते हुए आराम से देखा हुआ है, कोई संकोच नहीं उनको। तो अगर मैं गुल्म लता यानी कि ब्रज की एक विशिष्ट प्रकार की घास है वो रूप धारण कर लूंगा तो मुझ पर चलने में इनको संकोच नहीं होगा, और इनको संकोच दिए बिना अनायासी इनकी रज जो है मेरे शीश पर प्राप्त होगी। इसलिए उद्धव जी वापस ब्रज में आए हैं, उन्होंने तपस्या किया है ब्रज में घास का पत्ता बनने के लिए। एक ब्रह्मा जी है 120,000 साल तपस्या करके पत्थर बने हुए हैं, और एक उद्धव जी है जो यहाँ पर तपस्या करके घास का पत्ता बने हुए हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर चरम सीमा पर थे अपने विषय में, क्योंकि दोनों ने वो चरम स्थान छोड़कर यहाँ पर पत्थर और तृण का पत्ते का जन्म धारण किया हुआ है, और आज भी यहाँ पर वो विराजमान है कुसुम सरोवर के पास। और भगवान ने अपनी रानियों को उनके पास भेजा है अपने अंतर्धान होने के बाद, और भगवान की रानियों को भागवत 30 दिन सुनाकर अपनी रानियों को भगवान ने उनके हाथों से गोलोक धाम भेजा हुआ है। तो उद्धव क्यारी बहुत ही उत्कट स्थान है, बहुत ही अति उत्कट स्थान है। इस तरह से नंदगांव की लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, क्या क्या बताएं आपको, भगवान की साख्य लीलाएं हैं, अलग अलग लोग गोपों के साथ लीलाएं हैं, लेकिन उसका सार यही है कि हम सब लोग यहाँ पर उन गोपियों गोपालों की, नंद बाबा की, यशोदा के चरणों की धूल लेने आए हैं, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करने आए हैं, कि उनके प्रेम का एक कण भी हमको प्राप्त हो जाए और उनकी सेवा में कुछ सहभाग मिल जाए कृष्ण की, ताकि वो कृष्ण की सेवा में हम जुड़ जाएं, यही तमन्ना कामना आशा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बोलो नंदगांव धाम की, यशोदा देवी की, नंद महाराज की, ग्वाल बालों की, सभी गोपियों की, जय जय श्री राधे। शाह।